ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. ಕೃಷ್ಣಾಯ ವಾಸುದೇವಾಯ. ದೇವಕೀ ನಂದನಾಯ ಚ ನಂದಗೋಪಕುಮಾರಾಯ ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮೋ ನಮಃ. ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮೋ ನಮಃ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಸೊ ಅವರ್ ಟಾಪಿಕ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್. ಸೊ ದೇರ್ ಈಸ್ more sound here and less sound here, so let us balance it first, then we start. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಭಗವಾನ್ ಕಾ ನಾಮ ಸಬ್ಸೆ ಬಡಾ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಹೇ ಲೈಫ್ ಮೇ. ಹಮಾರಾ ಜೀವನ ಭಗವಾನ್ ಕೆ ನಾಮ ಕೆ ಲಿವರ್ ಪೇ ಖಡಾ ಹೇ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪಿವಟ್, ಹಾಂ ಪೈವಟ್, PIVOT. ಔರ್ ಉಸ್ ಪೇ ಏಕ್ ಕ್ಯಾ ಕಹತೆ ಉಸ್ಕೋ ತರಫ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಹಾಂ ಸೀಸಾ, ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಪ್ಲೇ ಇನ್ ಗಾರ್ಡನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪಿವಟ್ ಈಸ್ ದ ಹೋಲಿ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಲಾರ್ಡ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಹೌ ಲೈಫ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ವಿ ಗೋ, ಸಾರಿ ಹಿಂದಿ ಬೋಲ್ ಆವಾಜ್ ಜರಾ ಚಲ್ ರೇ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ತೊ ಜೀವನ ಕೋ ಅಗರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕರ್ನಾ ಹೇ ತೊ ಸಬ್ಸೆ ಪಹಲೆ ಕ್ಯಾ ಕ್ಯಾ ಚೀಜ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕರ್ನಾ ಹೇ ಉಸ್ಕಾ ಏಕ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಲೇನಾ ಪಡೆಗಾ, ಹೇ ನಾ. ಕ್ಯಾ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕರ್ನಾ ಹೇ ಹಮ್ಕೋ, ಔರ್ ವೋ ಲಿಸ್ಟ್ ಬನಾನೇ ಕೆ ಬಾದ್ ಮೇ ಕುಛ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕರ್ನಾ ಪಡೆಗಾ. जैसे हमारे साइंस में कैसे होता है, जब हम कोई प्रयोग करते हैं प्रयोगशाला में, तो एक बोलते हैं उसको गृहीतक, यानी पोस्टुलेट, एक पोस्टुलेट बनाते हैं, गिवन कंडीशंस एक्सेप्ट करते हैं कि हम लोग लेबोरेटरी में हैं, भारत में हैं, टेम्परेचर 25 है, सब एक्सेप्ट करते हैं, और फिर वो प्रयोग करते हैं, और वो प्रयोग करने के बाद में फिर जो रिजल्ट आता है उसको नोट करते हैं और रजिस्टर करते हैं. In English, we take a postulate, we accept the conditions around us and do the experiment, and then whatever conclusion comes, we note it down as a theorem. Is that right, all of your engineering students? This is how we come to theorem. So first of all, we need to know what we need to balance in life. Anybody can tell me what you think we should balance in life? What are we looking for balancing? Relationship, very important, extremely important. Huh? Mind and body. No, mind and body should balance with one another, or mind and body should balance with others? Our mind should balance with our body, right? Okay, what did you say? Emotions and practical life. अगेन वाओ माइंड बॉडी सोशल इकोनॉमिकल एंड स्पिरिचुअल बचा क्या फिर एवरीथिंग इज कवर्ड इन दिस एनीबडी एल्स एनीथिंग हाँ वर्क एंड वर्क एंड पर्सनल लाइफ यस तन मन एंड धन टाइम एंड मनी वी हैव टू बैलेंस एनीथिंग एल्स साइकोसोमैटिक रिहैबिलिटेशन बट दैट इज नॉट बैलेंसिंग दैट इज ट्रीटमेंट बैलेंसिंग ओके यस डे टू डे वर्क एंड स्पिरिचुअल लाइफ फर्स्ट टाइम स्पिरिचुअल लाइफ हैज कम दैट मीन्स देयर इज अ नीड ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ एंड देयर इज अ नीड टू बैलेंस स्पिरिचुअल लाइफ विद वॉट एवर एवरीथिंग एल्स हैज सेड एंड ऑल दिस थिंग्स वॉट यू हैव सेड इज इंपॉर्टेंट आई वुड लाइक टू ऐड स्पेसिफिकली हेल्थ हेल्थ ऑल्सो हैज टू बी बैलेंस्ड विद ऑफकोर्स बॉडी हैज कम अप मेनी टाइम्स बट स्पेसिफिकली हेल्थ हैज टू कम इन बिटवीन मनी रिलेशनशिप्स फैमिली ड्यूटी एजुकेशन इमोशंस रिलेशनशिप एंड ऑल्सो हेल्थ सो लेट अस try to remember these things when we speak in between if I forget you please remind me no problem but some facts we have to know in this life that if you disagree you tell me we'll discuss hamare jeevan mein samay ke pehle aur bhagya se zyada kabhi nahi aata ye kitne log accept karte hain समय से पहले यानी कि जो 50 साल की उम्र में मिलने वाला है वो 25 साल की उम्र में नहीं मिलेगा वो 50 साल की उम्र में मिलेगा और जितना भाग्य में लिखा है उतना ही मिलेगा ना कम मिलेगा ना ज़्यादा मिलेगा सब लोग एक्सेप्ट करते हैं इसको देयर इज नो डिबेट ऑन दिस ना ओके और दूसरी बात यह है कि हमारे जीवन में जो हमारा डेस्टिनी है वही मिलता है हमको और इसमें इम्पोर्टेंट बात क्या है कि सुख और दुख ये दोनों चीज़ें अपने ही अकॉर्ड से आती है अगर आप अभी समझो हमारे मंदिर में बहुत सारे ब्रह्मचारी हैं हाँ IITians हैं बहुत सारे उनको उनके नसीब में जो भी मिलना है वो ब्रह्मचारी बनने के बाद भी उनको मिलता है और अगर कोई व्यक्ति पढ़ा लिखने होने के बाद नसीब में उसमें ऐश्वर्य नहीं है तो वो ब्रह्मचारी नहीं बाहर रहेगा तो भी उसको सिंपल लाइफ ही जीना पड़ेगा क्या आप लोग बिलीव करते हैं इसके अंदर सुख और दुख अपने ही तरफ से आते हैं अगर आप कोशिश भी नहीं करेंगे ना तो भी सुख आएगा आपके जीवन में और कोई कोशिश तो करता नहीं दुख के लिए लेकिन दुख तो अपने में आते रहते हैं इवन इफ यू डोंट वॉन्ट इट दुख आता है कि नहीं आता है हम उसको रोज सुबह उठते ना हमारा एक ही प्रयास रहता है कि आज के दिन में सुख मिले और दुख ना मिले टेल मी ऑनेस्टली हम लोग डरते किससे है दुख नहीं होना चाहिए दुख से डरते हम लोग और हो सके तो सुख मिलना चाहिए आज मैं जो भी कुछ करूँगा दिन भर में जो करूँगा उससे मुझे सुख मिलना चाहिए ये फैक्ट है ना सबका लाइफ में एवरीबॉडी इज बैठ जाइए मैडम हरे कृष्णा वेलकम तो ये अगर आप एक्सेप्ट करते हो तो उसके आगे एक एक्सेप्ट आपको करना पड़ेगा कि हमारे जीवन में जो भी कुछ होता है तो उसका कोई तो एक कंट्रोलर ऊपर है हम उसको देख नहीं सकते लेकिन हम सबको देखता है सबको वो देखता है और हमारी कार्यों को भी नियंत्रण करता है जैसे हम लोग चुन सकते हैं कि हम सातवें माले से कूद पड़ेंगे लेकिन हम ये चुन नहीं सकते कि हमारी हड्डियां नहीं जुटेंगी वी कैन चूज टू जंप फ्रॉम सेवेंथ फ्लोर बट वी कैन नॉट चूज टू जंप एंड नॉट हैव ब्रोकन बोन्स दैट इज बियॉन्ड आवर कंट्रोल कभी कभी सातवें वाले पे कूदने के बाद भी कभी कभी कोई पेड़ में अटकता है, कोई जाली में अटकता है, कोई खिड़की में अटकता है और कुछ नहीं होता है उसको। और कोई ऐसा साइकिल से गिरता है तो मर जाता है, हमने सब देखा हुआ ये मेडिकल में। थोड़ा साइकिल ऐसा टेंट हो गया, गिर गया, ख़त्म, ऑन द स्पॉट डेड। और बड़े बड़े एक्सीडेंट में भी छोटा सा बच्चा बच जाता है, सब एडल्ट लोग मर जाते हैं। तो कोई ना कोई है ना ऊपर बैठा हुआ जो उसको नियंत्रित करता है, जो वो डेस्टिनी को संभालता है और उसके अनुसार कार्य करता है। ये सब हमको समझ में आया ना तो हमारा बैलेंसिंग जो है वो बढ़िया हो जाएगा। ये अगर नहीं मालूम होगा हमको तो हम लोग अलग प्लेटफॉर्म पे बैलेंस करने का प्रयास करेंगे। हमारा प्लेटफॉर्म जिस पर हम लोग बैलेंस करना चाहते हैं वो प्लेटफॉर्म सत्य पर आधारित नहीं होगा। वी वॉन्ट अवर बैलेंस टू बी ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ रियलिटी, इज दैट ट्रू? जैसे कोई बोलेगा कि मैं पॉलिटिशियन हूँ, मुझे प्रधानमंत्री बनना है, लेकिन गणित गणित करेंगे तो मालूम पड़ेगा कि मेरा चांसेस कितना है। लेकिन फिर भी अगर मैं इफ़ आई एम इन इल्यूजन, इफ़ आई थिंक कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा, कैसे भी करके बनूंगा, तो क्या होगा? उस भ्रम के ऊपर उसका पूरा जीवन आधारित होगा और जो भी करेगा वो इम्बैलेंस में ही जाएगा वो। और एक फैक्ट हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि डेथ इज इनएविटेबल। हम लोग एक्सेप्ट करते हैं इसको, वॉट एवर वी डू, हाउ एवर सक्सेसफुल अनसक्सेसफुल वी आर, डेथ इज श्योर। वैसे वी से एज श्योर एज डेथ, देयर इज अ फ्रेज वी से दैट एज श्योर एज डेथ। और आजकल की तारीख में लोग इस डेथ के बारे में सोचना नहीं चाहते, वो सोचते क्यों सोचने का डेथ के बारे में, सो इनऑस्पिशियस टू थिंक ऑफ डेथ। बट जब हम डॉक्टर बन के हॉस्पिटल जाते हैं तो डे एंड नाइट सफरिंग एंड डेथ देखते रहते हम लोग। सो हाउ कैन वी ओवरलुक, हाउ कैन वी निग्लेक्ट, हाउ कैन वी फॉरगेट व्हेन वी सी डेथ एंड लाइफ एंड स्ट्रगल एवरी सिंगल डे, व्हेन वी सी पेन एवरी डे, व्हेन वी सी डिसीज एवरी डे। एंड जस्ट बिकॉज यू डोंट सी डिसीज एवरी डे एंड पेन एवरी डे एंड डेथ एवरी डे, दैट डजंट मीन इट डजंट एग्जिस्ट। यू आर इन डिफरेंट place. You may stand at the bank of ocean and look at the land and not see the ocean at all. Is that possible? You're only looking at the land, buildings and everything else, and ocean you don't see at all. You're only looking at the land. So like that, doctors are looking at the death and pain and suffering every day, and common men are not seeing. That doesn't mean they don't exist. They are inevitable fact. And in between, sometimes you also end up in pain, suffering, and somebody can die. These are the facts of life. And I think intelligent people should always be aware with the truth and always live and plan and live your life on the platform of truth. सत्य के आधार पर, सत्य के स्तर पर हमें अपने जीवन चलाना चाहिए, असत्य या भ्रम के ऊपर नहीं चलाना चाहिए। क्योंकि असत्य और भ्रम के ऊपर जाएंगे तो एक दिन धक्का खाएंगे और हमारे सारे सपने टूट जाएंगे, क्योंकि हमारा रास्ता ही गलत है, हमारी दिशा ही गलत है, हमारा सोच ही गलत है। अभी इस सब चीज़ एक्सेप्ट करने के बाद में अभी हम लोग एक एक करके लेंगे। क्या बताया आपने? हेल्थ बताया, फिर जॉब है, करियर है, फिर मनी, एवरीबॉडी नीड्स मनी। और पैसा कमाने में कोई गलत नहीं है, क्योंकि तो ग्रह क्षेत्र सूत आप्त वित्तय, अपने को रहने को घर चाहिए। हाँ, आप लोग ब्रह्मचारी लोग हैं लेकिन फिर भी घर पे रहते ना, नॉट ऑन द रोड। छत चाहिए ना, छत उपकर आपके, छत चाहिए, क्षेत्र यानी कि मेंटेनेंस का सोर्स चाहिए, केवल आश्रम है, भोजन नहीं है तो सब चले जाएंगे छोड़ के। आश्रम ज्वाइन किया तो आश्रम भोजन भी चाहिए, बीमार पड़ेगा तो इलाज करने का मौका भी चाहिए। और आश्रम में उनका परिवार खुद का नहीं होता है लेकिन एक परिवार है ना उधर, गुरु भाइयों का, गुरु बहनों का। हमारा परिवार पति पत्नी बच्चों का है, रिश्तेदारों का है। हमारे पास जॉब है और रिलेटिव्स है, फ्रेंड्स है, सोसाइटी है, इनकी भी सोसाइटी है। पुणे में एक है, कलकत्ता में एक है, खड़गपुर में है, सब जगह इंटरनेशनल सोसाइटी है। सोसाइटी ज़रूरी है, उसके बिना कैसे जिएंगे। और ये सब चलाने के लिए वित्तय, पैसे की आवश्यकता है। देखो गृह क्षेत्र सूत यानी पुत्र मतलब फैमिली, गृह क्षेत्र सूत आप्त यानी रिलेटिव्स, और वित्त सब मेंटेन करने के लिए चाहिए पनी, उसके बिना नहीं चलता है। सबसे विरक्त भी आदमी होगा ना तो उसके लिए भी कम से कम एक बार दिन में इतना सा तो भोजन चाहिए, और उसके लिए पैसे की जरूरत होती है, या तो भिक्षा मांग के ले लो या तो डायरेक्टली इन काइंड यू कैन टेक, यू कैन टेक राइस, यू कैन टेक कैरेट, यू कैन टेक मैंगो और बनाना इन काइंड, और टेक डोनेशन एंड देन बाय दोज थिंग्स, बट यू नीड दोज थिंग्स राइट। लेकिन आजकल का ज़माना ऐसे है कि पुराने युगों में नॉट वेरी फार, अभी भी 4-5 साल पहले भी लोग केवल 4 महीना काम करते थे खेती में, और 8 महीना गलत लोग टाइम पास करते थे या पाप करते थे, और अच्छे लोग भजन करते थे। बट 8 मंथ्स एसेंशियली इज फ्री, 4 मंथ्स में भगवान ने इतना धान्य दिया है कि साल भर चलेगा, और साल भर भक्त लोग सत्संग करते रहेंगे, उत्सव मनाते रहेंगे, भगवान का नाम लेंगे, व्रत करेंगे, सब कुछ करेंगे, और गलत लोग दारू पियेंगे, मांसाहार करेंगे, नशा करेंगे, चोरी करेंगे, गलत काम करेंगे। बट एसेंशियली क्या बता रहा हूँ मैं, 4 महीने अर्निंग के लिए काफ़ी थे। बट आज ऐसा नहीं है कलयुग में, आज पति और पत्नी दोनों मिलके 12 महीने 10 से 12 घंटा काम किए बिना फैमिली का काम चलता नहीं है। और पहले ज़माने में एक बच्चा नहीं होता था, मैं मेरे घर में 8वां बच्चा हूँ, 8th child, माय एल्डेस्ट ब्रदर इज 17 ईयर एल्डर टू मी, इट्स लाइक 2 generations इन द हाउस। वो मेरे पिताजी जैसे ही हैं जो मेरे बड़े भाई हैं, और तभी भी हमारे घर पे एक दुकान पे मेरे पिताजी ने सबको संभाला, दो आदमी को डॉक्टर कर दिया, बाकी सबको ग्रेजुएट कर दिया, सबका शादी अच्छी तरह से कर दिया, वेल सेटल कर दिया सबको, अच्छा बॉडी, अच्छा खाना खिलाया, एक सिंपल दुकान के ऊपर। आज मुमकिन है कैसे? आज 2 आदमी होंगे तो 2 आदमी के 2 मोबाइल होंगे, और उसका डेटा पैक का भी कॉस्ट होगा, तो वो सब संभालने के लिए लोगों को डबल डबल काम करना पड़ता है, सब मेंटेन करने के लिए। एक गाड़ी पे काम नहीं चलता है, सबको अलग गाड़ी चाहिए, छोटे बच्चे को स्कूटर चाहिए, वाइफ को गाड़ी चाहिए, हस्बैंड को गाड़ी चाहिए, पास जाने के लिए मोटरसाइकिल चाहिए, दूर जाने के लिए गाड़ी चाहिए। सो व्हाट इज व्हाई आई एम टेलिंग ऑल दिस थिंग्स, बिकॉज जो समय हमारे मेंटेनेंस के लिए हम लोग खर्च करते थे वो अभी कम पड़ रहा है, और ज़्यादा समय देना पड़ता है। आप एग्री करते हो मुझसे? शनिवार को भी काम करते हैं, रविवार को भी काम करना पड़ता है, डॉक्टर भी रविवार को भी सुबह जाके पेशेंट देख के आता है दोपहर तक, हार्डली हाफ डे उसको रेस्ट मिलता है, और सर्जन होगा तो रात को भी नहीं, दिन भर इमरजेंसी भागो, ऑपरेट करते रहो। तो इसमें क्या होता है, लाइफ स्पैन कम हो जाता है। आप एग्री करते हो इसको? डू यू बिलीव दिस? जितना आप स्ट्रेसफुल लाइफ जीते हो उतना आपका लाइफ स्पैन कम होता जाता है, उतनी आपकी हेल्थ बिगड़ती है, उतना मानसिक विकार बिगड़ता है, उतना डायबिटीज हाइपरटेंशन ज़्यादा होता है, जितना आपका स्ट्रेसफुल लाइफ है, जितना भाग दौड़ी आप करते हो। फिर उसके बीच में प्रॉब्लम क्या होता है, उसके बीच में बोलते हैं कि क्या है, पापा और मम्मी को मिलने को ही समय नहीं है, एक दूसरे को मिलने को समय नहीं है, और मुझे मिलने को भी समय नहीं है। एवरीबडी इज कंप्लेनिंग, ही इज नॉट गिविंग टाइम, शी इज नॉट गिविंग टाइम, दे आर नॉट गिविंग टाइम, एवरीबडी इज कंप्लेनिंग दिस डेज, क्योंकि सब लोग इतने व्यस्त हैं, अपने इसमें व्यस्त है कि माँ बाप तो आजकल बहुत सेकेंडरी हो गया है, पति पत्नी को मिलना भी मुश्किल हो गया। तो किसी ने कहा था रिलेशनशिप, तो जब आप बहुत बिजी होते हो तो क्या हो जाता है, रिलेशनशिप कम ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकिंग, हार्ट्स ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकिंग, बिकॉज नो इंटरेक्शन, नो फीडिंग, नो न्यूट्रिशन, नो कल्टिवेशन, ओनली वर्क वर्क एंड वर्क, एंड द मनी कैन नॉट स्पीक टू यू, मनी कैन नॉट गिव यू सेटिस्फैक्शन टू यू, पीपल गिव सेटिस्फैक्शन टू यू, देन हेल्थ सफर्स, वॉट हेल्थ सफर्स आफ्टर दैट, what is the biggest problem which hitting you at this moment of time, mental health, mental health is the biggest problem of 21st century, even big CEOs, leaders, politicians normally go to psychiatrist to take counseling to come over stress, wo mansik tanav ko bachne ke liye wo डॉक्टर के पास जाते रहते हैं, और कोई अभी ऐसा टैबू नहीं है कि अरे पागल को डॉक्टर के पास गया पागल हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे बचपन में अगर आप साइकेट्रिक के पास जाएंगे ना और बाहर उसके वेटिंग में बैठेंगे हॉस्पिटल में, तो बोले कि पागल हो गया ये, इज गॉन मैड। और अभी ऐसा नहीं है, रूटीनली पीपल आर गोइंग टेकिंग टैबलेट ऑफ डिप्रेशन, टैबलेट्स ऑफ मूड एलिवेटर्स, ऑल दिस थिंग्स आर हैपनिंग, स्लीपिंग पिल्स इज नॉर्मल, रात को नींद नहीं आती है, रात रात को जगते रहते हैं, 3 बजे नींद आती है, फिर 6 बजे उठना पड़ता है, भागना पड़ता है काम पे, फिर दिन भर टेंशन है, कैसे करें इसको, हाउ टू मैनेज, लाइफ इज डिमांडिंग टू मच फ्रॉम अस। और सबसे पहले आदमी जो मार खाता है उसका हेल्थ खराब हो जाता है, पैसा तो आ जाता है लेकिन उसमें उसके बाद में प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते। जैसे मेरी बच्ची मेरे साथ हमेशा बचपन में कहती थी पापा बैडमिंटन खेलो मेरे साथ, और मैं बोलता था बेटा मैं बहुत थक गया हूँ, आप अकेले खेलो, मैं अगले हफ्ते में खेलूँगा आपके साथ। और वो अगला हफ्ता कभी नहीं आया, आज वो शादी हो गई उसकी, और आज मैं बोलूँगा बेटा मेरे पास टाइम है आज बैडमिंटन खेलने के लिए, बोलते ज़रूरत नहीं मुझे बैडमिंटन खेलने की आज क्योंकि वो टाइम था जब ही ज़रूरत थी उसको, और वो बैडमिंटन इम्पोर्टेंट नहीं था, स्पेंडिंग टाइम गिविंग इम्पोर्टेंस टू द पर्सन वॉज इम्पोर्टेंट दैट टाइम। और आज वो बड़े हो गए हैं, उनको अपना पति मिल गया है, अपना संसार कर रहे हैं, तो उनको आपके टाइम की उतनी ज़रूरत नहीं जितनी पहले वो ज़रूरत थी। इसका मतलब क्या है, हम समय पे वो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको कर नहीं पाते हैं और बाद में पछताते हैं। जैसे मम्मी बहुत ज़्यादा काम कर रही है बाहर जाकर कि बच्चे को विदेश में पढ़ाऊँगी, और बच्चा बोल रहा है मम्मी आप किधर हो, आप मिलते ही नहीं हो, रात को आते हो थक के आते हो, बात भी नहीं करते हो, इरिटेट रहते हो। मन में आप क्या सोच रहे हैं, ये बालक को मुझे विदेश में पढ़ाना है, एक बड़ा आदमी बनाना है, अच्छा आदमी बनाना है, अच्छी ज़िंदगी देना है, जो हमने कष्ट भोगे उसको नहीं देना है, ऐसा सोचते हैं ना हम लोग। लेकिन वो तो भविष्य की बात है, आज उसको अपना समय चाहिए तो आप नहीं दे पा रहे उसको, और कल जब आपको समय लगेगा तभी वो विदेश में बिजी रहेगा बहुत, क्योंकि आपने मेहनत किया उसके लिए, बहुत मेहनत करके उसको विदेश में एडमिशन के लिए लाखों रुपया दिया है, एडमिशन का हॉस्टल का सब कुछ दिया है, फाइनली वो सक्सेसफुल हो गया और विदेश चला गया, और अभी आप अकेले हो, आपको बेटा और बेटी और सबका सहारा चाहिए, लेकिन वो अमेरिका में बैठा है, आपने उसको भेजा था उधर, बहुत बड़े पोस्ट पे है, बहुत बिजी है, बहुत रिस्पेक्टफुल आदमी है, वो रिस्पेक्टेड आदमी है। हमारे ना घर के पास 25 किलोमीटर के पास में जुहू का मंदिर है, आप सुना है हरे कृष्णा जुहू मंदिर, मुंबई का सबसे बड़ा मंदिर, उसके पास एक कॉलोनी है राम झरोखा हाउसिंग सोसाइटी, उसमें कम से कम 550 फ्लैट है, बड़े बड़े एकदम 1,000, 1,500, 2,000 स्क्वायर फीट के, और सारे फ्लैट में आपको यकीन नहीं होगा इस बात का, सारे फ्लैट्स में केवल बुड्ढा बुड्ढी रहते हैं, ओनली ओल्ड मैन ओल्ड लेडी, और आपको ये भी यकीन नहीं होगा उनके सारों के बच्चे अमेरिका में, कितनी अजीब बात है, एक पूरी कॉलोनी है 550 फ्लैट की, उसके अंदर सारे बच्चे जो है फॉरेन में हैं और केवल ओल्डीज वहाँ पर रहते हैं और उधर वॉकिंग करते रहते हैं और रोज़ बैठ के ये बात करते हैं वो कभी आने वाला है और भी नहीं आने वाला है, इसके बारे में बात करते हैं, या तो बात करते हैं कि अभी आज कौन सा टेस्ट करना है मेरा, आज मेरा बीपी चेक करना है और डॉक्टर के पास जाना है, शुगर का टैबलेट बदली करना है, आज ECG करना है, आज मेरा MRI का अपॉइंटमेंट है, आज मेरा बैकिक वाला डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है, ये डिस्कस करते रहते हैं। और कुछ लोग रोते हैं कि 3 साल हो गया आया नहीं अब तक, दिवाली में भी नहीं आया, शादी के सालगिरह में भी नहीं आया, मेरा 75th बर्थडे को भी नहीं आया, 75th बर्थडे का सेरेमनी हुआ वो नहीं आ पाया, उसने बोला मम्मी कितना पैसा चाहिए बोलो आपको 75th बर्थडे के लिए क्या गिफ्ट दे दूँ, बोले मुझे गिफ्ट नहीं चाहिए मुझे आप चाहिए, बोले मैं तो नहीं आ सकता। फिर बोलते हैं मेरे को ऐसा तकलीफ हो रहा है, मम्मी बेस्ट हॉस्पिटल में जाओ और बेस्ट हॉस्पिटल में जाके बेस्ट जगह पर टेस्ट करो, लेटेस्ट मशीन पे करो, मैं पैसा भेजूंगा चिंता मत करना, लेकिन उससे उनको समाधान नहीं होता है। तो कैसे करें इसको बैलेंस, हम लोग इस सब चीज को बैलेंस तब कर सकते हैं जब हमारा प्राधान्य क्रम यानी प्रायोरिटी पहले डिसाइड करेंगे हम लोग कि हमारे जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है। वो हर चीज़ के जीवन में अलग अलग हो सकता है, हर व्यक्ति के जीवन में, लेकिन आपके जीवन में कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट है जो आपको ध्यान देना पड़ेगा, लिस्ट बनाना पड़ेगा, कि मेरे जीवन में सब इम्बैलेंस हो रहा है अभी, लेकिन अभी मुझे बैलेंस करना है। और मेरे जीवन में शायद 9 चीज़ इम्पोर्टेंट है, फॉर एग्जांपल शायद एक हेल्थ है, मनी है, बच्चे लोग है, और रिलेशनशिप्स है, मेंटल हेल्थ है, मेरा पीस है, बहुत सारी चीज़ें हैं, समझो 8-9 होगी। आपको सभी चीज़ों को लाइन में रखना पड़ेगा कि ये लाइन में मुझे इम्पोर्टेंस है। सबसे पहले इम्पोर्टेंट ये है, सबसे इम्पोर्टेंट सेकेंड इम्पोर्टेंट ये है, सबसे थर्ड इम्पोर्टेंट ये है, फोर्थ इम्पोर्टेंट है, और ये भी इम्पोर्टेंट है भले वो लास्ट में है। और एक चीज़ होती है लाइफ में हमारी, सम थिंग्स आर अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट, यू एग्री विथ मी? जैसे आज हमारा मोबाइल का बिल भरने का लास्ट डेट है तो आज वो अर्जेंट है, लेकिन अगर वो नेक्स्ट, आज सपोज 1 जुलाई है, कल 1 जुलाई होगा समझो, और लास्ट डेट 25 जुलाई है, तो वो इम्पोर्टेंट है लेकिन आज अर्जेंट नहीं है। लेकिन अगर आप आज नहीं करेंगे, कल भी नहीं करेंगे, नहीं करते नहीं रहेंगे, तो 25 जुलाई को वही चीज़ इम्पोर्टेंट और अर्जेंट भी हो जाएगी, और डिजास्टर भी हो सकता है, आपका पैकेज और मोबाइल डिस्कनेक्ट हो सकता है, या बिजली का बिल नहीं भरेंगे तो बिजली कट हो सकती है वार्निंग पीरियड के बाद में भी। तो इसलिए अपने इम्पोर्टेंट चीज़ को 2 भाग में आपको डिवाइड करना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या है? अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट इम्पोर्टेंट बट नॉट सो अर्जेंट। थर्ड क्वाड्रेंट अर्जेंट बट नॉट इम्पोर्टेंट। एग्जाम्पल है कुछ इसका? अभी कभी सिंगदाना खाना है मुझे, अभी मुझे ऐसा मूड आया कि समुद्र में जाके मुझे सिंगदाना खाना है, वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं बहुत दिन से खाया नहीं हूँ, लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं है, नहीं खाया तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। ऐसे बच्चों में होता है ना, मुझे अभी का भी चॉकलेट चाहिए, दैट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट बट वेरी अर्जेंट फॉर द बेबी। लास्ट क्वाड्रेंट में क्या है? नॉट इम्पोर्टेंट नॉट अर्जेंट। जैसे मेरे बेडरूम को ना एक वॉल पे मुझे ग्रीन कलर देना है, ऐसा मुझे एक व्यक्ति ने बताया था, बट इट्स नॉट एज इम्पोर्टेंट एज डायबिटीज, अनकंट्रोल्ड शुगर, है ना? इज इट राइट? वो घर में मुझे एक वॉल पे येलो कलर देना है, लेकिन आज मेरी शुगर अनकंट्रोल्ड है, डॉक्टर के पास जाना बहुत इम्पोर्टेंट है। इस तरह से अपना लाइफ हमको देखना पड़ता है। तो कितने क्वाड्रेंट हो गए? 4 क्वाड्रेंट हो गए। पहला क्या बताया मैंने? अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट। सेकेंड क्या बताया? नॉट अर्जेंट बट इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक बच्चे को अच्छे स्कूल में डालना है, आज इम्पोर्टेंट नहीं है, आज अर्जेंट नहीं है, लेकिन अभी वो 3 साल का होगा तो उसको अच्छे स्कूल में एडमिशन देना है। और नेक्स्ट इज अर्जेंट बट नॉट इम्पोर्टेंट, और फोर्थ इज नॉट इम्पोर्टेंट नॉट अर्जेंट। तो हम सब लोगों को ना सबसे पहले अगर बैलेंस लाइफ करना है तो आपकी लाइफ की चीज़ें इन 4 कॉलम में डाल दीजिए, आप 4 क्वाड्रेंट में, वो आपके हाथ में है, वो आपको ही तय करना है ये कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं इंपॉर्टेंट है। और ये डालने के लिए भी आपको नॉलेज होना चाहिए कि किस चीज़ को इम्पोर्टेंट देना है। सब लोगों को पता है कि हेल्थ बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर हेल्थ जगह पर नहीं है ना तो आपके बहुत सपने साकार नहीं होंगे और बाकी आपके गोल्स लाइफ के भी साकार नहीं होंगे। बराबर है? डू यू एग्री विथ मी? समझो आपको बेटे को टाइम देना है, पति को टाइम देना है, नौकरी में परफॉर्म भी अच्छा करना है, साल में एक बार विदेश जाना है घूमने के लिए, बट ये सब करने के लिए आपका हेल्थ अच्छा नहीं होगा तो सब प्लान फ्लॉप हो जाएंगे आपके, ना किसी को टाइम दे पाएंगे, ना किसी को मिल पाएंगे, ना फॉरेन जा पाएंगे, ना कुछ कपड़ा लेने को जा पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे आप। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके लाइफ में इम्पोर्टेंट क्या है। लेकिन सबके लाइफ में हेल्थ इम्पोर्टेंट है और सबके लाइफ में मनी भी इम्पोर्टेंट है। और एक चीज़ ऐसी है जो हम लोग इम्पोर्टेंट होते हुए भी उसको कभी ध्यान ही नहीं देते, वो कौन सी चीज़ है? यस सर, हाँ, हेल्थ का तो बता दिया, सब में सब जानते हैं हेल्थ इम्पोर्टेंट है, लेकिन एक ऐसी चीज़ है कि हम उसको इम्पोर्टेंट देते नहीं है इम्पोर्टेंट होने के बाद। यस मैडम, गॉड, वो कहीं भी दिखता नहीं हमको हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में, ऑल्दो ही इज़ द कंट्रोलर ऑफ एवरीथिंग, सब कंट्रोल करते हैं वो, सब उनकी इच्छा से होता है, हमारे सपने भी उनकी इच्छा से पूरे होते हैं या टूट जाते हैं, सब कुछ उनके हाथ में है, फिर भी हम उनको इम्पोर्टेंट देते नहीं हैं। और फाइनली आपने चारों कॉलम में, चारों क्वाड्रेंट में सब चीज़ें डाल दी अपना, अच्छा से उसको उसके हिसाब से टाइम देना शुरू किया आपने, अर्जेंट इंपॉर्टेंट फर्स्ट टाइम, नेक्स्ट सेकेंड टाइम, सब कुछ दिया, उस तरह से काम करने लगे और आपको लगता है कि बैलेंस आपका लाइफ अच्छा हो रहा है। लेकिन जब एक समय ऐसा आएगा कि आपका लाइफ ही एंड होने लगेगा, तो ये चार क्वाड्रेंट का मीनिंग क्या है बताइए आप? आज लाइफ है तो चार क्वाड्रेंट में क्या है, इसका इंपॉर्टेंस है और आपको उसके अनुसार टाइम देना है। लेकिन जब लाइफ एंड में आता है, ये मैं सब क्यों बोल रहा हूँ आपको, क्योंकि मैंने एंड ऑफ लाइफ इस विषय में स्पेशलाइज किया हुआ है। इसको कहते हैं पैलिएटिव मेडिसिन, मेडिसिन फॉर टर्मिनली इल पीपल हु आर गोइंग टू डाई फॉर श्योर इन दैट इलनेस ओनली, उसमें ठीक नहीं होने वाले हो, ऐसे लोगों का देखभाल करने में मैंने स्पेशलाइज किया है। तो मैं बार बार देखते रहता हूँ उनको, बड़े पद वाले लोग होते हैं, बड़ी एफ्लुएंट, हाईली पोजिशन, हाईली इन्फ्लुएंशियल पीपल, एजुकेटेड पीपल, वेरी हेल्दी पीपल, वेरी सोशली कनेक्टेड पीपल, हाईली कनेक्टेड पीपल, इन्फ्लुएंशियल पीपल, बट लास्ट मोमेंट पे वो जितनी चीज़ें उनके जीवन में है एज ए एसेट जिस पर आप गर्व कर सकते हो, उनमें से एक भी चीज़ का उसको उस समय लाभ नहीं होता है। उसका इन्फ्लुएंस का भी लाभ नहीं है, उसके पैसे का भी लाभ नहीं है, उसके 10 डिग्री का भी लाभ नहीं है, उसके फ्रेंड सर्कल का भी लाभ नहीं है, डॉक्टर्स का फ्रेंडशिप है उसके साथ, हॉस्पिटल में कॉन्टैक्ट्स है उसका भी लाभ नहीं है, सब लोग उसके पैसे नहीं काम पे है, उसके रिश्तेदार काम में नहीं है, सब लोग चाहते हैं मदद करना उसको लेकिन कोई मदद नहीं कर सकता है उसको, उसको असहाय होकर अकेले उस मृत्यु का सामना करना पड़ता है। तो उस समय ये चार क्वाड्रेंट में कौन सी चीज आएगी? एक ही चीज बचती है, उसको पहले में रखो, सेकंड में रखो, थर्ड में रखो या फोर्थ में रखो, वही है सब जगह पर आएगा। बाकी सब कुछ डॉक्टर क्या बोलते हैं, ये बड़ा हॉस्पिटल है, 1200 बेड का एफ्लुएंट हॉस्पिटल है, इसमें क्या है, सब चीज़ का इलाज होता है। लेकिन वहीं पर आपको बोला जा रहा है इसको अभी घर ले जाओ और भगवान से प्रार्थना करो, हम कुछ नहीं कर सकते उसको। तो घर ले जाते हैं और कुछ नहीं कर सकते, वो क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि जाने वाला है, इसका कल्याण करो भगवान। तो वो जो लास्ट मोमेंट पे सारे क्वाड्रेंट के सब चीज़ें खाली होकर उस भगवान बैठने वाले हैं, समझो आपने अभी जब आपका स्वास्थ्य ठीक है, परिवार भी ठीक चल रहा है, इकोनॉमिक्स भी ठीक है, यू आर लाइक क्वाइट ओके, नॉट डिजास्ट्रस कंडीशन कि भाई अभी किसी की डेथ हो गई घर पे, छोटा बच्चा मर गया, ऐसा कुछ है नहीं ना, या फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया, घर ही अर्थक्वेक में घर ही डूब गया पूरा, इट्स ऑल पॉलिसी पेपर्स, एवरीथिंग इज गॉन अंडरग्राउंड, ऐसा डिजास्टर नहीं है, ओके है सब कुछ, रीजनेबली ओके है। उस समय अगर हम ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज डाल देंगे हमारे क्वाड्रेंट में, तो कुछ फर्क पड़ेगा लाइफ में, क्या लगता है आपको? जरूर फर्क पड़ेगा। मैं बताता हूँ क्यों फर्क पड़ेगा, क्योंकि ना हमारे में से सब लोगों को ऐसी इच्छा है, यू विल एक्सेप्ट विद मी, आई एम गारंटिंग यू, कि हमारे जीवन में संकट आ जाए फिर भी मैं स्थिर रहूं, हमारे जीवन में डिजास्टर आ जाए फिर भी मैं ठीक रहूं, मेरे घर में आज बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया फिर भी ऑफिस जाके मेरा काम मैं बढ़िया से करूं, मतलब क्या, कुछ भी हो जाए मुझे डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। डू यू बिलीव दिस, दैट यू वांट टू हैव दिस कंडीशन? आपके पति से आप झगड़ा हो गया आज, आपका हस्बैंड के साथ, वाइफ के साथ झगड़ा हो गया, और ऑफिस में आपका बड़ा प्रोजेक्ट का फाइनल मीटिंग है आज, आपको क्या इच्छा रहेगा कि मेरे मन पर घर पे हुए झगड़े का इतना परिणाम भी नहीं होना चाहिए, मैं ऐसा ठंडा, कैसे बोलते हैं हम लोग, आइस फैक्ट्री इन द हेड एंड शुगर फैक्ट्री इन द टंग, किसको अच्छा लगता नहीं बताइए, कुछ भी हो जाए आइस फैक्ट्री इन द हेड और कुछ भी हो जाए शुगर फैक्ट्री इन द टंग, कुछ भी हो जाए वो मिठाई बात करेगा, कुछ भी हो जाए दिमाग शांत रहेगा, कभी एजिटेट नहीं होगा, कभी फ्रस्ट्रेट नहीं होगा, थोड़ी बात पर नहीं, बड़ी बात पर भी नहीं, बड़ा भी संकट आ गया तो भी शांत और स्थिर रहेगा समुद्र के समान। समुद्र में कैसे, बहुत सारी नदियां बाढ़ लेकर भी गए ना तो भी समुद्र वैसा ही रहता है, और अकाल पड़ गया और नदियां सूख गई फिर भी समुद्र वैसा ही रहता है। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि वी शुड बिकम लाइक ओशन, ढेर सारी खुशियां भी आई तो भी एजिटेट नहीं होता है, और ढेर सारी खुशियां नहीं आई, नदियां सूख गई तो भी वो वैसा रहता है। आई एम श्योर मुझे और आप सब लोगों को ऐसा होना अच्छा लगेगा, लेकिन ऐसा होना अच्छा लगेगा होने पर ऐसा नहीं होता है, केवल इच्छा करने से होता है क्या? घर में डिजास्टर हो जाए मेरा सब कुछ लुट जाए फिर भी मैं वैसे ही रहूँगा, हंसते हुए शांति से काम करूँगा, आराम से प्रयास करूँगा, जहाँ गिर गया पहाड़ से फिर भी उठ के चलने लगूँगा। ऐसा तो कविता में अच्छा लगता है लिखने में कि मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसा रहूँ, पहाड़ से भी गिर जाऊँ तो भी उठकर चलने लगूँ, और किसी ने गाली भी दिया तो मैं हंसते रहूँ और उनकी तारीफ करते रहूँ, चाहे मेरी स्तुति हो या मेरी निंदा हो। दिस आर आइडियल थिंग्स एंड वी लव टू बी, बट हाउ वी कैन बी ऑटोमेटिकली विदाउट डूइंग एनीथिंग। हमको अगर आम समारे 24 इंच करने हैं तो सपना देख के कविता लिख के हाथ 24 इंच नहीं होगा, जिम में जाकर मेहनत करना पड़ेगा, तभी एक दिन वो 12, 16, 18, 20, फिर 24 हो जाएगा, है ना। मतलब कुछ किए बिना कुछ प्राप्ति नहीं होती है, प्रयास के बिना किसी को फ्री में दुनिया में कुछ मिलता नहीं है। भले डेस्टिनी नाम की चीज़ है लेकिन फिर भी प्रयास छोड़ दो ऐसा नहीं होता ना, प्रयास तो करना ही है हमको, हमारी तरफ से हमारा प्रयास तो होना ही चाहिए। फिर भगवान को उतने प्रयास के लिए कितना देना है वो भगवान तय करेंगे अपने कर्मों के अनुसार, लेकिन प्रयास करना किसी को छोड़ना नहीं चाहिए। तो अगर वो आइडियल कंडीशन हमारे लाइफ में आपको चाहिए कि कुछ भी हो जाए मैं स्थिर रहूं और हंसता ही रहूं, तो उसके लिए भगवान की आवश्यकता है। बिना भगवान के साथ कनेक्ट किए बिना वो हासिल नहीं हो सकता है, वो शांति, वो मन मानसिक संतुलन, वो डिप्रेशन का ना होना, वो क्रोध ना होना, दुख ना होना, हाँ, लाभा लाभो जया जयो, यश में भी अपयश में स्थिर रहना, लाभ में हानि में भी स्थिर रहना, कुछ अच्छा लेक्चर दे पाए या नहीं दे पाए तो भी ठीक रहना इसके लिए साधना करनी आवश्यक होती है। और जब व्यक्ति भगवान के साथ जुड़ने लगता है तो उसका बैलेंसिंग ऑफ लाइफ एकदम बढ़िया होने शुरू हो जाता है, क्योंकि तब उसको पता चलता है कि किस समय पर कहाँ टाइम देना है और कितना देना है। वो मैं आपको बैठकर यहाँ पर डिक्टेट नहीं कर सकता मेरे प्रायोरिटी के अनुसार, वो आपको आपके लाइफ में देखना है कि आज आपकी मम्मी बीमार है तो आपको छुट्टी लेकर उसका टेस्ट करने डॉक्टर के पास लेके जाना है, और मैं भी मेरी मम्मी ठीक है तो मैं जॉगिंग को जाऊँगा फिर, यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। लेकिन अगर मैं और आप दोनों भगवान से कनेक्टेड हैं और रोज उस स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए कुछ टाइम दे रहे हैं तो आपकी बाकी जितनी हेल्थ है ना, इकोनॉमिकल हेल्थ, सोशल हेल्थ, रिलेशनशिप का हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, सब धीरे धीरे बैलेंस होने लगेगा। आप करके देखिए, मैं जब कॉलेज में था ना तो मैं बहुत ऐसा एग्रेसिव था, आज भी हूँ कम हूँ जरा पहले बचपन में बहुत था, जरा सी बात पे झगड़ा, गुस्सा, समटाइम्स दो दो दिन जाके समुद्र किनारे बैठा था दुखी होकर, कुछ किसी ने बोल दिया तो इतना सेंसिटिव था, इतना एग्रेसिव था। तो फिर मैंने जिमनेजियम ज्वाइन किया ताकि जाके कसरत करो, वर्जिश करो ठीक से, तो फिर थोड़ा माइंड एकदम स्टेबल हो जाएगा। थोड़ा बहुत फर्क पड़ा, एनर्जी थोड़ा सा यूटिलाइज हो गया, थोड़ा सा फिजिक भी अच्छा हो गया, तो माइंड भी थोड़ा ठीक हो गया, कॉन्फिडेंस आ गया वगैरह वगैरह, लेकिन पूरा जितना चाहिए था उतना नहीं हुआ। फिर उसके बाद मैंने योग शुरू किया, 11th, 12th और फर्स्ट MBBS के 3 साल मैंने पूरा डिटेल डीप योग किया। योग शिक्षक बनने वाला था लेकिन फर्स्ट MBBS के एग्जाम आ गए, फिर मैं योग शिक्षक नहीं बन पाया। और योग करने से मुझे ये पता चला कि योग ऐसी क्रिया है, योग आसन मन प्राणायाम, जिसमें मन और शरीर का संतुलन होता है। जिमनेजियम और मस्कुलर एक्सरसाइज जो होती है ना, उसके खाली बॉडी की ही देखभाल होती है, माइंड का कनेक्शन नहीं होता है उससे, अनलेस यू लर्न ब्रीदिंग वाइल डूइंग द एक्सरसाइज। लेकिन योग आसन और प्राणायाम जो प्रक्रिया है, अष्टांग योग, इसमें स्वतः ही श्वास और शरीर की पोजिशन का लिंक होता है, किस जगह पर कितना सांस लेना है, कहाँ रोकना है, फिर कितना लेना है, कब छोड़ना है, हर पोजिशन में मूवमेंट में भी सांस का एक ट्रेनिंग होता है, इसलिए ऑटोमेटिक प्राणायाम यानी मन जो है संतुलन में आ जाता है। बहुत फर्क पड़ा लेकिन फिर भी पूरा चाहिए उतना नहीं पड़ा जो मैं खोज रहा था उसके लिए, कि मुझे ये चाहिए तो वो नहीं मिल रहा था। उसके बाद मैं हरे कृष्णा मंदिर में गया और मैंने जप शुरू किया, और जप कुरू शुरू करने के बाद में धीरे धीरे मुझे समझने लगा कि जो मुझे चाहिए है वो इसमें मुझे प्राप्त हो सकता है। साथ में मैं एक्सरसाइज भी कर रहा था, मस्कुलर योग भी कर रहा था, और दोनों आज भी करता हूँ, वो भी ज़रूरी है, लेकिन फाइनल पेनेशिया क्योर जो है ना, सर्व औषधि, पेनेशिया क्योर का मतलब क्या है, द अल्टीमेट मेडिसिन, वो मुझे भगवान के नाम में प्राप्त हुआ। और आज मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ कि जो एग्रेशन था मुझ में वो भी 5% भी नहीं बचा है। ये मेरा कोई अचीवमेंट सर्टिफिकेट की बात नहीं है, एक्सपीरियंस की बात बता रहा हूँ, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, जो मैंने मेरे वाइफ में देखा है, उसमें क्या फर्क पड़ा, वो मेरे बच्चे में देखा है, और जो एग्रेसिव बच्चे हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं उनके अंदर भी हमने देखा है कि धीरे धीरे जब स्पिरिचुअल लेवल पे हम नरिशमेंट देते हैं तो हमारा साइकी, हमारा एग्जिस्टेंस बहुत बैलेंस और शांत हो जाता है। कैसा है ना हमारा लाइफ, ऐसा ऐसा आलेख हमारा ग्राफ ऐसे है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होता है, और हमको प्लेटो में जाना है लाइफ में, लेट इट बी स्टेडीली लाइक ए प्लेटो। प्लेटो मतलब क्या, एक लाइन में भले थोड़ा सा चढ़ा हो उसके अंदर, लेकिन वो स्टेडीली जा रहे हैं ऊपर, ऐसे ऐसे नहीं जा रहे हैं। और हमको परेशानी उससे होती है कि जब हम ऊपर नीचे होते हैं हर चीज़ में, ज़रा ज़रा सी चीज़ों में ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो खुद भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, और बाद में सोचते हैं अरे मैंने ऐसा क्यों बोला उनको, मुझे ना बहुत गुस्सा आ जाता है, मुझे उस समय पता नहीं क्या होता है, काश मैं उस समय शांत रहूं। तो मम्मी क्या बोलती थी बचपन में, आप ना बहुत गुस्सा आएगा ना थोड़ा सा ब्रेक ले लो और 10 लंबी सांस ले लो और उल्टा गिनो 10, 9, 8, 7, 6 और उधर मन लगा दो और उसके बाद में सोचो क्या करना है, तो आपका सोच और डिसीजन बदले हो जाएगा उस समय। हम लोग कॉलेज में बहुत सोचते थे ऐसा कि बहुत गुस्सा आएगा ना ये, तो सो जाओ उस पर एक्शन करने के पहले, एक सो जाओ अच्छी तरह से और नेक्स्ट मॉर्निंग उठ के वापस सोचो क्या करना है, आपका सोच बदले हो जाएगा। क्योंकि तो आपने क्या किया, माइंड को रेस्ट दिया और टाइम दिया, आपका सोच बदली हो गया, डिसीजन चेंज हो गया आपका। और ये सब कुछ एकदम ऑर्डिनरी एक्सरसाइज है, उल्टा गिनना, सांस लेना, खड़े हो जाना दीवार की तरफ खड़े होके, ये तो फिजिकल सॉल्यूशंस है। मैं उस सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ जो आपके अंदर से सॉल्यूशन पैदा होगा उससे, और वो है सोल, और प्रॉब्लम लाइज एट दैट लेवल, और वहाँ से आपको ट्रीटमेंट शुरू करना है। फिर बहुत सारी बीमारी हमारे मेडिसिन में ऐसी होती है जो मन के विकारों की वजह से होती है, बहुत सारा भय मन में है तो एक तरफ का कैंसर होता है, बहुत सारा गुस्सा है तो ब्लड प्रेशर और हार्ट डिजीज होता है, और कोई तकलीफ है आपको, कोई एंग्जाइटी बहुत सारी है, क्योंकि तो ये सब मन के अलग अलग विकार है, सेम विकार नहीं है। भय लगना अलग विकार है, चिंता होना अलग विकार है, बार बार गुस्सा आना दूसरा विकार है, ऐसे मन के कई सारे विकार हैं, बार बार दुख होते रहना किसी भी चीज़ का, किसी के जीवन में कुछ भी होगा दुख होगा, मेरे जीवन में होगा तो भी दुख होगा, तो हमको नहीं ऐसा होना है, हमको चाहते हैं कि नहीं मैं स्थिर रहूं, क्योंकि अगर मेरे जीवन में दुख आया और मैं दुखी नहीं हो जाऊंगा तो मैं मेरे दुख में भी किसी को मदद कर सकता हूं, लेकिन अगर मेरे जीवन में मैं दुखी होकर बहुत दुख हो गया मुझे और दुखी हो गया तो आपके जीवन में मदद नहीं कर सकता मैं। तो बेसिकली अगर मुझे किसी की सेवा करनी है, किसी को हेल्प करनी है, तो मुझे पहले स्टेबल रहना पड़ेगा हर चीज़ के अंदर, और वो अपने आप नहीं होता है, उसके लिए थोड़ा साधना करना पड़ता है, और साधना बहुत आवश्यक है मनुष्य के लिए, जिसको आप व्रत भी कह सकते हैं, किसी चीज़ का व्रत आपको लेना है और आपको पालन करना है नियमों का, उसको कहते हैं रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स, उसको फॉलो करना है आपको, कि आपको क्या खाना है, वो क्या नहीं खाना है, किस वक्त सोना है, किस वक्त उठना है, उसको कहते हैं दिनचर्या, उसके बाद में कहते हैं ऋतुचर्या, बारिश में क्या नहीं खाना है और ठंड में क्या खाना है और ठंड में क्या नहीं खाना है, किस समय किस सोना है और किस समय उठना है, सोने के लिए बेस्ट टाइम कौन सा है, उठने के लिए बेस्ट टाइम कौन सा है, बॉडीली एक्सरसाइज के लिए कौन सा बेस्ट टाइम है, फैमिली के लिए कौन सा बेस्ट टाइम है, भोजन के लिए कौन सा बेस्ट टाइम है, कौन सा बेस्ट टाइम नहीं है, ये सब ऋतुचर्या दिनचर्या में आता है। लेकिन एक आत्मचर्या होती है ना अपनी, जो आप खुद हो, आपकी सही पहचान क्या है कि हम लोग आत्मा हो ना, वे आर ऑल स्पिरिट सोल्स, उसके ऊपर मैं आदमी हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं ये फलाना एज का हूँ, मैं इंडियन हूँ, मैं इस कास्ट का हूँ, उस कास्ट का हूँ, ये सब बाद में होता है आइडेंटिटी, लेकिन सबसे पहले आइडेंटिटी क्या होती है, हमारी पहचान कि हम लोग स्पिरिट सोल है, हम आत्मा है। और अगर हम अपनी पहचान के ऊपर काम नहीं करेंगे और बाकी जो सेकेंडरी टर्शरी पहचान है उस पर काम करते रहेंगे बार बार, तो फिर हमें परमानेंट एंड शाश्वत सोल्यूशन और शांति कभी मिलेगा नहीं। ये सब मैं इतना सब क्यों बता रहा हूँ, अगर हमको अपना लाइफ बैलेंस करना है, तो सबसे पहले होना चाहिए नॉलेज अपने बारे में, उसके बाद में इम्पोर्टेंट हमारे जीवन में क्या क्या चीज़ें हैं उसके बाद नॉलेज होना चाहिए, तब हम योग्य समय उन चीज़ों को देंगे जितना ज़रूरी है। लेकिन सबसे पहले ज़रूरी है अपने आत्मा को पोषण देना। आत्मा को बिना पोषण के कुपोषित माल नरिश्ड रखने से बाकी सारी चीज़ें अपने आप ही माल नरिश्ड हो जाती है, कुपोषित हो जाती है। आप एक्सेप्ट करते हैं उसको? देखिए कैसे, मैं आपको बताता हूँ। आपकी बॉडी है, दो हाथ है, दो पैर है, दिमाग है, आंखें हैं, कान है, सब कुछ है। वो कौन नियंत्रित करता है? हु कंट्रोल्स बॉडी? ऑर्गन्स, इंद्रिय, हमारे हाथ पैर, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, कौन कंट्रोल करता है? माइंड। माइंड 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 डिजायर करता है ना कि चलो जलेबी खानी है, चलो उठो यहाँ से, अभी दुकान वहाँ पर है, गाड़ी निकालो, निकालो और गर्म जलेबी 6 बजे मिलती है, वहाँ पहुँचो, जेब में पैसा लेके जाओ, वो आपको बोलेगा सब करो ये सब, जलेबी खाने की इच्छा है अभी। टंग के थ्रू वो जलेबी का आनंद लेगा माइंड। लेकिन उसके ऊपर क्या होता है, मन को कौन कंट्रोल करता है? इंटेलिजेंस। क्या बोलेगा मन आपको कि जलेबी खाना है, वो दुकान से खाना है। कि बुद्धि क्या बोलेगी, वो दुकान में जलेबी ओपन रहती है, सब फ्लाइज बैठते हैं उसके ऊपर, आपको टाइफाइड हो सकता है उसकी वजह से, उधर मत खाओ, वो दुकान में जाके खाओ, बंद में जहाँ पर रखा है, हाइजीनिक है, वहाँ से खाओ। आपका माइंड बोलेगा सी शोर पे जाके पानी पूरी खाओ, तो बुद्धि बोलेगी नहीं, उधर कौन सा पानी रहता है पता नहीं है, उसके हाथ में कितना गंदगी मालूम नहीं है, वो कौन सा मटेरियल यूज़ करता है, कौन सा ऑयल करता है यूज़, कहाँ हाथ डाल के क्या बनाता है, यू मे गेट सिक। घर में लाके बनाना अच्छा है, मम्मी को बोलो बना दो तो ठीक रहेगा। दिस इज इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस डिसीजन कैसे ले सकता है बताओ आप? अनदर क्वेश्चन, इंटेलिजेंस अच्छा कैसे बन सकता है? अभी देखो जिन्होंने एटम बॉम्ब बनाया वो भी इंटेलिजेंट है ना, इज नॉट ट्रू? जो लोग आतंकवादी है, जो लोग इतना बड़ा प्लॉट बनाते, इतना प्लान करके हमारे नजरों से ओझल होकर भी बॉम्ब ब्लास्ट करके आते हैं, उनको बुद्धि तो है ना, लगता है कभी कभी हमसे ज्यादा बुद्धि उनके पास होती है। वो इतना इंटेलिजेंट प्लान करते हैं कि आपका सारा सुरक्षा कवच भेद के वो जाके पहुंच के काम करके आते अपना, तो वो भी बुद्धि है ना, और आपकी भी बुद्धि है, तो ये बुद्धि में फर्क क्या है? एक बुद्धि अच्छी है और एक बुद्धि बुरी है, और उसका भी आईक्यू 120 है और आपका भी 120 है, लेकिन आप 120 आईक्यू का इस्तेमाल सबका कल्याण करने के लिए करते हो और वो 120 आईक्यू का इंतजाम डिस्ट्रॉय करने के लिए करते हैं सबको। तो वो जो बुद्धि है वो ज्ञान प्राप्त करने से अच्छी या बुरी हो जाती है। महात्मा गांधी कहते थे कि रोज मैं भगवत गीता के श्लोकों से मेरे बुद्धि को स्नान कराता हूँ, तब मेरी भ्रष्ट बुद्धि जो है वो पवित्र हो जाती है, और उस पवित्र बुद्धि से फिर मैं विचार करता हूँ और मन को बताता हूँ ये नहीं करना है, उसके अनुसार मेरे शरीर भी वैसा ही कार्य करता है। और ये बुद्धि के ऊपर कौन है? आप लोग हैं, हम लोग हैं, जो वो रथ में बैठे हुए आदमी जैसा है, इज लाइक अ पैसेंजर इन द चैरियट। घोड़े जो है ना वो हमारे इंद्रिय जैसे हैं, वो सब भाग रहे, इधर उधर भाग रहे हैं। मन जैसा है वो जो है ना रेंस, रेंस क्या बोलते हैं, लगाम, लगाम, वो मन की तरह है। और सारथी जो है ना वो बुद्धि है, और बुद्धि को चलाने वाला कौन है? वो आत्मा है। और वो आत्मा को अगर सत्संग प्राप्त हो गया तो वो उस दिशा में जाएगा, और आत्मा को अगर कुसंगति प्राप्त हो गई तो फिर गलत जगह जाएगा, उसी बुद्धि का गलत इस्तेमाल करेगा, वही मन उसको गलत चीज़ बताएगा, इंद्रियां गलत काम करेगी, सिगरेट पिएंगी, दारू पिएंगी, मटन मच्छी करेंगी, बलात्कार करेंगी, लूट मार करेंगी, लोगों का बुरा करेंगी, विध्वंस करेंगे, आतंक करेंगे। और वही आत्मा को अगर अच्छा संग प्राप्त हो गया भगवान के विषय वाला तो उसके रथ की दिशा पूरी बदल जाएगी। तो सबसे पहले बैलेंस करने के लिए जरूरत क्या है? आत्मा हम है ये हमारी पहचान को हमको जानना चाहिए, और आत्मा को क्या क्या आवश्यकता है वो आत्मा को देना चाहिए। जब आत्मा सुदृढ़ रहेगी तो हम वो डिसीजन ले पाएंगे कि हमारे जीवन में इम्पोर्टेंट क्या है और इम्पोर्टेंट क्या नहीं है, कितना टाइम किसको देना है, कितना महत्व किसको देना है। ये बहुत बेसिक चीज़ है, मैं आपको कोई पीएचडी स्टफ नहीं बता रहा हूँ, आई एम टेलिंग यू ओनली बेसिक्स। जैसे कल मैं एक जगह लेक्चर दे रहा था, तो वो एचआर की एक मैनेजर माता जी थी, औरत, वो मुझे कह रही थी कि प्रभु जी टाइम ही नहीं मिलता है सोचने के लिए, कल का जो इशू था उससे बाहर निकलने के लिए आज टाइम नहीं है, कल का इशू वैसे कैसा है, आज नया इशू पैदा हो गया है, और फिर आज जब घर जाऊंगी तो कल जब जाऊंगी तो दो ऑलरेडी पेंडिंग है, तीसरा भी इशू पैदा होता है। तो समझ में आता नहीं कि क्या कैसे किसको निपटाऊं मैं। तो मैंने कहा कि आपका मोबाइल जो है ना, मैंने उसको मोबाइल सामने पड़ा था, मैंने बोला ये मोबाइल जो आपका है ये क्या करते हो आप रोज, उसको चार्ज करते हो? हाँ रात को चार्ज करती हूँ। कभी उसको डिस्चार्ज हो रहा है, आप बात कर रहे हो बात कर रहे हो बात को, हलो 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 कर रहे हो, बोले आवाज़ सुनाई नहीं पड़ रही है, कुछ कट रही है आवाज़ आपकी, बोले मोबाइल में डिस्चार्ज हो रहा है। तो और बात करते रहेंगे तो क्या होगा एक दिन कि एक समय क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा वो, फिर आप बात नहीं कर पाएंगे ना, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, चार्ज पे रखना पड़ेगा उसको, और चार्ज करने के लिए अपना टाइम लेगा वो, एकदम हाई स्पीड में होगा तो 20 मिनट में हो जाएगा, नॉर्मल होगा तो एक डेढ़ घंटे में हो जाएगा, लेकिन उतना टाइम आपको देना ही पड़ेगा उसको, तब जाके वो दोबारा आपका इंपॉर्टेंट फोन कॉल ले सकता है। ये सब मानते हैं ना आप लोग? वैसे ही आपने केवल ड्रेन किया और ड्रेन किया, यूज़ किया यूज़ किया यूज़ किया, एनर्जी को यूज़ किया यूज़ किया यूज़ किया, लेकिन वापस जब तक एनर्जी नहीं देंगे तब तक अगला काम कैसे करेंगे आप? 12 घंटा काम किया, 15 घंटा काम किया, कभी कभी 20 घंटा काम किया, लेकिन बाद में सोए नहीं तो आप काम कर पाएंगे क्या? आपको बहुत इच्छा होती है काम करने के बाद में भी। जैसे हमारे एग्जाम के टाइम पे हमको लगता था काश अगर नींद ही नहीं आती तो कितना अच्छा था, 6 घंटे बाकी है पेपर को मेरे, 10 बजे पेपर है और 4 बज रहे हैं, रात भर मैंने पढ़ाई किया, अगर मुझे नींद की जरूरत नहीं होती तो मैं अभी भी लेकर 9 बजे तक पढ़ता, 5 घंटे भी पढ़ता, लेकिन नींद तो आएगी, और नींद अगर नहीं लेंगे आप तो रात भर जो पढ़ा था और जो पहले भी पढ़ा था वो एग्जाम लिखने में याद नहीं आएगा आपको। इसलिए हम हरे कृष्णा वाले थे ना हॉस्टल में, वो एग्जाम के टाइम पे 8 घंटा सोते थे बहुत बढ़िया से, क्योंकि हमको ये पता था कि साल भर में जो पढ़ाई किया है, लास्ट हफ्ते में जो पढ़ाई किया है, वो याद तभी आएगा जब मैं आज रात को अच्छा सो जाऊंगा ना, तो सारा चीज़ मुझे याद आएगा। ये हमको फिजियोलॉजी के हिसाब से पता था कि मेमोरी कैसे बनती है और कैसे प्रोड्यूस होती है और कैसे मेमोरी को रिट्रीव करना है, ये हमको पता था। बाकी सब लोग रात भर पढ़ाई करते थे, खास करके ओवरनाइट पढ़ाई करते थे, हम लोग 10 बजे सोते थे, 4 बजे उठते थे, फर्स्ट क्लास बाला जप करते थे, फिर पढ़ाई करते थे, क्योंकि लास्ट डे पे क्या नया चांद तारे तोड़ेंगे हम लोग, जो पहले से पढ़ा है समझा है वही जो आएगा एग्जाम में वही लिखेंगे, आज नया चीज़ क्या चैप्टर खोल के नया पढ़ के थोड़ी प्रोड्यूस कर सकते हैं उसको। उसी तरह से जब तक हम अपने आप को स्पिरिचुअल रिचार्ज नहीं करेंगे तब तक आपका इंटेलिजेंस भी थोड़ा करप्ट रहेगा, माइंड भी डिस्टर्ब रहेगा और बॉडी भी उसका असर धीरे धीरे, आपने क्या बताया था, साइकोसोमैटिक, आपने बताया था ना। देखो साइकोसोमैटिक का मतलब क्या है, माइंड के वजह से सोमा यानी बॉडी पर जो असर होता है उसको साइकोसोमैटिक कहते हैं। जब माइंड बहुत क्रोध में है तो आप बीपी के पेशेंट बन जाएंगे, खाने में अनियंत्रित रहेंगे तो डायबिटीज के मरीज हो जाएंगे, पानी बहुत कम पिएंगे तो किडनी इन्फेक्शन के मरीज बन जाएंगे, और ये सारा चीज माइंड से कनेक्टेड है। तो साइकोसोमैटिक चीजें बुद्धि भ्रष्ट रहेगी तो मन को भ्रष्ट करेगी, और शरीर से गलत काम करेंगे तो आगे की तकलीफ आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो अगर बैलेंस भी करना है आपको, हेल्थ बैलेंस करना है, इमोशंस बैलेंस करना है, रिलेशनशिप बैलेंस करना है, फैमिली बैलेंस करना है, मनी बैलेंस रखना है, तो पहले टॉप मोस्ट जो उसका बेसिस है ना उसको बैलेंस करना पड़ेगा ना, आपको पोषण देना पड़ेगा, नरिश करना पड़ेगा, न्यूट्रिशन देना पड़ेगा उसको। इसलिए जब हम लोग हमारे गुरु को देखते हैं ना, गुरुजी को, या हमारे गुरुजी अपने गुरु को देखते हैं प्रभुपाद जी को, और जब उनका हम जीवन चरित्र पढ़ते हैं ना, तो हमको पता चलता है कि उनके जीवन में कितनी समस्या आई। हम सोच रहे हैं हमारे जीवन में कितनी समस्या है, कितने प्रॉब्लम्स है, उनको जाके बताएं, दिल खोल के बताएं, महाराज हमको इतनी तकलीफ है क्या करें आप बताओ, कुछ उपाय करो, आपको आशीर्वाद दो, कुछ आदेश दे दो हमको, ताकि हम लोग अपना मन को संतुलन कर सकें। लेकिन जब गुरु जी का लाइफ पढ़ेंगे और प्रभुपाद जी का लाइफ पढ़ेंगे तो हमको लगता है हमारे से हजारों गुना अधिक तकलीफ थी उनको, लेकिन कैसे वो हर समय पे शांत हंसते हुए बैलेंस्ड एडवाइस इज गिविंग टू एवरीबडी, सबको अपना बढ़िया से शांति से सुनकर एडवाइस दे रहे हैं, क्योंकि उनकी साधना बहुत स्ट्रांग थी। हमारे प्रभुपाद महाराज रोज 64 राउंड हरे कृष्ण महामंत्र करते थे। रात को 9 बजे सोएंगे ना तो 12 बजे उठते थे और रात भर किताब लिखते थे, और 4 बजे भक्तों को जगाते थे मंगल आरती के लिए, और खुद भी उठते थे और स्नान करके मंगल आरती अटेंड करते थे। कैसे किया सब उन्होंने, शक्ति कहाँ से आई उनकी? इसको कहते हैं स्पिरिचुअल पावर। जो माइंड पावर, बॉडी पावर, इंटेलेक्चुअल पावर से परे होती है, विल पावर से परे होती है, वो विल पावर देती है, वो पावर निश्चय की शक्ति, वो पावर देती है स्पिरिचुअल पावर। और आपको अगर कुछ बैलेंस करना है, समझो आपको हेल्थ को अभी टाइम देना है, तो आपको डिटर्मिनेशन चाहिए कि नहीं चाहिए कि मुझे रोज 30 मिनट चलना ही है, किसी भी हालत में कुछ भी हो जाए, ट्रैवलिंग में हो, सफर में हो, टूर में हो, कभी भी हो, 30 मिनट्स आई हैव टू वॉक। तो उस निश्चय को बल देने के लिए अंदर से विल पावर नहीं रहेगी तो कैसा निश्चय आएगा आपका, आप फेल हो जाएंगे। आपको तय किया आपने कि मुझे डायबिटीज है, अभी स्वीट्स और फ्राइड नहीं खाना है, लेकिन क्या करें, कलकत्ता मंदिर में आए तो महाप्रसाद ला के दिया मुझे प्रभु जी, बंगाल का खिचड़ी, बंगाल का स्वीट है ये, मलाई चाप, मलाई सैंडविच, आप यहाँ पर नहीं खाएं तो कहाँ खाएंगे प्रभु जी? आप थोड़ा टेस्ट करो। आपको अगर ना बोलना है उसको तो आपको अंदर की शक्ति चाहिए ना बोलने के लिए, नहीं प्रभु जी मैं नहीं खा सकता उसको, मेरा जो भोजन है वही मैं खाऊंगा। ये सबका कनेक्शन जो है ना, हमारे बिहेवियर का, हमारे डिटर्मिनेशन का, हमारे एक्शंस का, हमारे रिएक्शंस का, ये सब स्पिरिचुअल पावर के ऊपर डिपेंड रहता है। और वो स्पिरिचुअल पावर फ्री में नहीं मिलती है, उसके लिए कुछ करना पड़ता है। तो मैं सबसे आपको विनती करूंगा कि सुपरफिशियल कहीं सेमिनार में जाकर, कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करके, कोई मैनेजमेंट प्रोग्राम है, कुछ ये मोटिवेशनल स्पीकर है, उसने आपको 50 चीज़ें बताई, 7 चीज़ माइंड को कंट्रोल करने के लिए, शादी को सक्सेसफुल करने के लिए 10 स्टेप्स होता है ना, 10 स्टेप्स टू बिकम हैप्पी इन मैरिड लाइफ, 7 स्टेप्स टू विन द हार्ट ऑफ अ वुमन, 5 स्टेप्स टू बिकम सक्सेसफुल इन बिजनेस, 10 टिप्स टू बिकम हेल्दी ऑल टाइम, अगर वो सब जगह पर है तो सब लोग हेल्दी क्यों नहीं होते हैं? सबका मैरिज सक्सेसफुल क्यों नहीं होता है? सबके रिलेशनशिप सेटिस्फैक्टरी क्यों नहीं होते हैं? सबका बिजनेस सक्सेसफुल क्यों नहीं होता है? व्हाट इज रॉन्ग? क्योंकि देयर इज अ मिसिंग लिंक, उसमें एक मिसिंग लिंक है, वो है सोल। वो जब तक आप इंट्रोड्यूस नहीं करते हैं अपने लाइफस्टाइल में, विचार में, सोच में, तब तक आपका लाइफ इम्बैलेंस ही रहेगा, मैं आपको गारंटी देता हूं। और वो इंक्लूड करने के बाद तुरंत आपको कल बैलेंस नहीं हो जाएगा, उसमें भी आपको टाइम देना पड़ेगा, कंटिन्यूटी में आपको देना पड़ेगा टाइम, लगातार देना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी में देना पड़ेगा, तब धीरे धीरे आपको उसका असर मिलना आरंभ हो जाएगा। इसलिए मैं आपको विनती करूंगा, आज आप घर पे जाइए और एक चौकोर बनाइए, उसको 2 डिवाइड करके 4 चौकोर बनाइए, उसमें लिखिए जो मैंने कहा था, और एक एक कॉलम में आप लिखते जाइए कि आपके लिए इम्पोर्टेंट अर्जेंट क्या है, इम्पोर्टेंट बट नॉट अर्जेंट क्या है, कैटेगोराइज कीजिए, और चारों कैटेगरी में स्पिरिचुअल लाइफ छोटे अक्षर में सब कोने में लिख लीजिए। जब तक स्पिरिचुअल लाइफ प्लेस में नहीं है ना, तब तक आपका सारा परिश्रम व्यर्थ है। प फ ब भ म, इसको कहते हैं प वर्ग। प क्या है? परिश्रम। परिश्रम करने के बाद भी यश नहीं मिलता है तो भय पैदा होता है। प और फ क्या है? फेण। परिश्रम करके व्यक्ति एग्जॉस्ट हो जाता है। प फ ब, ब का क्या अर्थ है प्रभु जी बताइए? आनंद प्रभु जी, प फ ब ब क्या है बताइए? प फ और भ, दैट इज भय। हाँ, भय। उसके बाद में म, वो क्या है? मृत्यु। अल्टीमेटली ये सब करके यश नहीं मिलने पर हमारा एंड निश्चित है। तो आपको प सुधारना है सबसे पहले, कि आप परिश्रम किस दिशा में कर रहे हैं। परिश्रम आप उस दिशा में करना चाहिए जिसका शाश्वत फल मिलेगा आपको, लेकिन हम परिश्रम उन चीजों के लिए कर रहे हैं अशाश्वत फल प्राप्त करने के लिए, टेम्पररी फल प्राप्त करने के लिए। मानते हैं आप इस बात को? जीवन भर उस चीज के लिए मेहनत करते हैं जिनमें से एक भी चीज आपके साथ में नहीं आने वाली। और ये कब मालूम पड़ता है? लास्ट स्टेज में। इतना मेहनत किया, बंगला बनाया, घर बनाया, जगह बनाई, इतना सारा प्रॉपर्टी, बच्चों को सिखाया, इसमें से कुछ भी एक वस्तु मेरे काम की नहीं है अभी, मृत्यु से बचने के लिए। और मृत्यु से बचने के लिए जो जरूरत थी वो मैंने कभी टाइम दिया नहीं उसको, उसके लिए परिश्रम कभी किया ही नहीं है, तो सारा समय क्या हो गया? बर्बाद हो गया, वेस्ट हो गया। आज मेरे इस घटना के लिए जो मददगार चीज़ है वो चीज़ तो मेरे पास है ही नहीं, जो मैंने कमाई नहीं आज तक, वही कमाई चीज़ जो मुझे इस समय काम पे नहीं आने वाली है। हॉस्पिटल में जब कोई लास्ट स्टेज में आता है ना, आप जाके उससे बात कीजिए, हम लोग करते हैं उनसे, हाउ डू यू फील, आपको अभी अंतिम क्षण में क्या लग रहा है? वो कहता है सब कुछ व्यर्थ है, बोलते एवरीथिंग इज अ बिग वेस्ट। बोला बच्चे भी वेस्ट है, हाँ इतना सा मेहनत किया, किधर है वो लोग, है ही नहीं कुछ, इतना मेहनत करके इतना पैसा कमाया तो क्या फायदा है उसका, आज कुछ भी उपयोग नहीं उसका, इतने रिश्ते नाते। बोला कौन आता है लास्ट मोमेंट पे हेल्प करने के लिए, जब आप होते हो यूजलेस तो कोई आपके साथ में घूमता नहीं आज बाजू में, जब आप यूजफुल हो, आपके पास पैसा है, आपको एफ्लुएंस है, सब जमा होते रहते हैं। आज देखो आज मेरे साथ कुछ नहीं है, कोई नहीं है। ये हर एक डेथ बेड पे बैठे हुए व्यक्ति का ये फीलिंग्स होती है, आप जाके खुद यकीन कर लीजिए। मीट द पीपल हु आर इन द लास्ट स्टेज ऑफ लाइफ, नॉट डाइंग मे बी, बट दे नो कि अभी बहुत दिन कम बचे हैं, उनके साथ बात कीजिए, दिल से दिल बात कीजिए, हाउ डू यू फील, हाउ डू यू फील एट द एंड ऑफ योर लाइफ। अगर आपको कोई मिला ना व्यक्ति कि मैं बहुत खुश हूँ, बहुत सेटिस्फाइड हूँ, मेरा जिंदगी सक्सेसफुल हो गया, तो आप एक दुर्लभ व्यक्ति को मिल रहे हैं। इज अ वेरी रेयर पर्सन हु हैज गट्स टू टेल कि आई एम वेरी सेटिस्फाइड, सब मेरी जिंदगी में इच्छा पूरी हो गई है, कुछ इच्छा नहीं है, वो दुर्लभ है ये। 99.99% लोग यही बोलेंगे कि सब वेस्ट है, कुछ फायदा नहीं है। तो अगर हमको उस स्थिति में नहीं जाना है तो हमको आज कुछ करना है जो उस समय आपको लगेगा कि हाँ यूजफुल है, और वो है योगा। योगा का मतलब क्या है? वो कसरत और आसन प्राणायाम की बात नहीं कर रहे हम, उस योग की व्याख्या पूर्णक बात कर रहे हैं, मतलब बाय डेफिनेशन, बाय संस्कृत वर्ड, व्हाट इज योग? योग मीन्स टू यूनाइट, युज धातु से बना हुआ शब्द है वो, किसी से जुड़ना उसको योग कहते हैं। और योग ये शब्द अधिकतर भगवान से जुड़ने के लिए बनाया गया है, जैसे योग बोलते थे हम लोग तुरंत भगवान को याद करते हैं। और कई प्रकार के योग हैं लेकिन उसमें भक्ति योग श्रेष्ठ माना गया है, और वो अगर हम अभी से शुरू करेंगे तो आप वो धन कमाएंगे जो आपको एंड में काम आएगा। वो धन कौन सा है? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, खर्च न छूटे चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त ही जाए। और हमारा धन कैसा है? खर्च करने से खर्च हो जाता है, चोर उसको लूट के ले जाता है, और बढ़ता तो अपने आप है ही नहीं, खत्म ही होते जाता है। ऐसे धन को हम लोग कमा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, उसके लिए परिश्रम कर रहे हैं। लेकिन जो धन की हम बात कर रहे हैं, जो हमको अंतिम क्षण में बहुत काम में आएगा, वो धन के लिए मेहनत नहीं कर रहे हैं और फिर पछता रहे हैं। लेकिन तब पछताने से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि हमारे बैलेंस में टाइम तो है ही नहीं कि अभी शुरू करूंगा तो क्या होगा, बोले बहुत लेट हो गया अभी। इसलिए जब, इसलिए कहते ना, वो कौन सा श्लोक है, कंठावरो दोनों विदो कृष्णा त्वदीय पंकज पंजरांतम अदैव विशतु मे मानस राज हंस। यहां तक पहले बताता हूं, बाद में बताता हूं। इसका अर्थ क्या है कि कृष्ण भगवान अब जीवन सर संतुलित है, सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज इन प्लेस, अपने अपनी जगह पर है, मन भी शांत है, उद्विग्न नहीं है, पीड़ित नहीं है, यातना नहीं भोग रहा है, थोड़ा बैलेंस में है, सुख में है। तब तक मेरा मन का जो राजहंस है उसको आपके चरणों के कमल में लगा दो। कृष्णा त्वदीय पद पाद पंकज, मेरा मन जो है वो राजहंस की तरह है आज, वो आपके चरणों के पंकज यानी कमल में लगा देना। नहीं तो क्या होगा अगर नहीं करूंगा आज तो आगे बता रहे हैं। प्राण प्रयाण समय कफवात पित्तौ ಕಂಠಾವರೋಧನ ವಿಧೌ ಸ್ಮರಣಂ ಕುತಸ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಭಿನಯ ಕರುಂಗಾ ಓ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರಯಾಣ ಸಮಯ ಕಾ ವೇಟ್ ಕರುಂಗಾ ಕಿ ತಬ್ ಆಪ್ಕೋ ಪುಕಾರುಂಗಾ ತೋ ಉಸ್ ಸಮಯ ಕಫ್ ವಾತ ಪಿತ್ತ ಜೋ ಯಹಾಂ ಪರ್ ಜಮಾ ಹೋ ಜಾಯೆಂಗೆ ನಾ ಉಸ್ಕೆ ವಜಹ ಸೆ ಕಂಠಾವರೋಧ ಹೋ ಜಾಯೆಗಾ, ಕಂಠ ಅವರೋಧ ಹೋ ಜಾಯೆಗಾ. ಕಂಠಾವರೋಧ ನ ವಿಧೌ ಸ್ಮರಣಂ ಕುತಸ್ತೆ, ತಬ್ ಕೈಸೆ ಮೇರಾ ಮನ್ ಕಾ ರಾಜಹಂಸ ಆಪ್ಕೆ ಚರಣೋ ಮೇ ಲಗೇಗಾ, ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಹೇ ವೋ. ಇಸ್ಲಿ ಆಜ್ ಹೀ ಲಗಾ ದೋ, ಆಜ್ ಸಬ್ ಕುಛ ಸಹೀ ಹೈ ತಬ್ ತಕ್ ಲಗಾ ದೋ ತಾಕಿ ವೋ ಆದತ್ ಬನೇಗಿ ಲಗ್ನೆ ಕಿ ತೋ ಉಸ್ ಸಮಯ ಭೀ ಲಗೇಗಾ. ಅಂತಿಮ ಸಮಯ ಪೆ ಕ್ಯಾ ಚೀಜ್ ಯಾದ ಆಯೇಗಿ ಆಪ್ಕೋ, ವಹೀ ಚೀಜ್ ಯಾದ ಆಯೇಗಿ ಜೊ ಆಪ್ನೆ ಜೀವನ್ ಭರ್ ಯಾದ ಕಿ ಹೈ, ಜಿಸ್ಮೇ ಜೀವನ್ ಭರ್ ಮೇ ಪ್ರೇಮ ಕಿಯಾ ಹೈ, ಜೀವನ್ ಭರ್ ಮೇ ಮನ್ ಲಗಾಯಾ ಹೈ, ಜೊ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಹೈ ಆಪ್ಕೋ ಬಾರ್ ಬಾರ್ ಯಾದ ಕರ್ನೆ ಕಿ, ಜಿಸ್ಮೇ ಆಪ್ಕೋ ಪ್ರೇಮ ಹೈ ಉಸಿ ಚೀಜ್ ಪೆ, ವಹೀ ಚೀಜ್ ಆಪ್ಕೋ ಜೀವನ್ ಭರ್ ಲಗಾನೆ ವಾಲೆ ಚೀಜ್ ಕೋ ಹೀ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೇ ಆಪ್ ಯಾದ ಕರ್ ಪಾಯೇಂಗೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಮೇ ಆಪ್ಕೋ ಅಪ್ನೆ ಆಪ್ ಉಸ್ ಕಂಠಕ್ಕೆ ಅವರೋಧನಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಉಸ್ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಕೋಯಿ ನಯಿ ಚೀಜ್ ಯಾದ ನೀ ಆಯೇಗಿ ಜೋ ಆಪ್ನೆ ಕಭಿ ಅಭ್ಯಾಸ ನೀ ಕಿಯಾ ಹೈ. ಲಾಸ್ಟ್ ಮೇ ಆಪ್ಕೋ ವಹೀ ಚೀಜ್ ಯಾದ ಆಯೇಗಿ ಜಿಸ್ಮೇ ಜಿಂದಗಿ ಭರ ಆಪ್ನೆ ದಿಲ್ ಲಗಾಯಾ ಹೈ, ಇಸ್ ಪರ್ ಆಪ್ನೆ ಜಿಂದಗಿ ಭರ ಪ್ರೇಮ ಕಿಯಾ ಹೈ. ಹೋ ಸಕ್ತಾ ಹೈ ವೋ ಪೈಸಾ ಹೈ ತೋ ಪೈಸೆ ಕಿ ಯಾದ ಆಯೇಗಿ, ಹೋ ಸಕ್ತಾ ಹೈ ಔರ್ ಕುಛ ಪದ ಹೈ ಔರ್ ಕುಛ ಪೊಜಿಷನ್ ಹೈ ಆಪ್ಕಾ, ಕೋಯಿ ಔರ್ ಕುಛ ಚೀಜ್ ಹೈ ಆಪ್ಕೋ ಜೋ ಬಂದ ಅಚ್ಚಿ ಲಗ್ತಿ ಹೈ, ಆಪ್ಕೋ ಪರಿವಾರ ಹೈ, ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಹೈ, ಧನ ಹೈ, ದೌಲತ್ ಹೈ, ಜಿಸ್ ಪರ್ ದಿಲ್ ಲಗಾಯಾ ವಹೀ ಯಾದ ಆಯೇಗಾ. ಔರ್ ಅಗರ್ ಭಗವಾನ್ ಪೇ ದಿಲ್ ಲಗಾನೆ ಕಾ ಪ್ರಯಾಸ ಕಿಯಾ ಹೈ, ಮೆಹನತ್ ಕಿ ಹೈ, ಸಾಧನಾ ಕಿ ಹೈ, ತೋ ವೋ ಯಾದ ಆಯೇಗಾ. ಔರ್ ಅಗರ್ ಪಾಂಚ್ ಚೀಜ್ ಮೇ ದಿಲ್ ಲಗಾಯಾ ಆಪ್ನೆ ತೋ ಶಾಯದ್ ಪಾಂಚೋ ಕಿ ಯಾದ ಆಯೇಗಿ, ಲೇಕಿನ್ ಸಬ್ಸೆ ಪೆಹಲೇ ವೋ ಯಾದ ಆಯೇಗಿ ಜೋ ಪಾಂಚೋ ಮೇ ಸಬ್ಸೆ ಅಧಿಕ ಪ್ರಿಯ ಹೈ ಆಪ್ಕೋ. ಹೋ ಸಕ್ತಾ ಹೈ ಆಪ್ನೆ ಪಾಂಚ್ ಚೀಜ್ ಮೇ ದಿಲ್ ಲಗಾಯಾ ಹೋಗಾ, ಪ್ಯಾರಲಲಿ ಕಾಮ್ ಕಿಯಾ ಹೋಗಾ, ಲೇಕಿನ್ ಪಾಂಚ್ ಮೇ ಸೇ ಭೀ ಆಪ್ಕೋ ಏಕ್ ಚೀಜ್ ಜ್ಯಾದಾ ಪ್ರಿಯ ಹೋಗಿ ತೋ ವೋ ಪೆಹಲೇ ಯಾದ ಆಯೇಗಿ, ಕ್ಯೋಕಿ ಯೇ ಮನ್ ಕಾ ಸ್ವಭಾವ ಹೈ, ಮನ್ ಕೆ ಸ್ವಭಾವ ಕಾ ಆಪ್ ತೋಡ್ ನಹೀ ಸಕ್ತೆ. ಲೋಕ ಕ್ಯಾ ಬೋಲ್ತೇ ಹೈ, ಹಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ ದಿನ ಪಢಾಯಿ ಕರೆಂಗೆ ಔರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ಲೇಕೆ ಆಯೇಂಗೆ, ಹೋ ಸಕ್ತಾ ಹೈ ಕ್ಯಾ? ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ವಹಿ ಲಾತಾ ಹೈ ಜೋ ಸಾಲ ಭರ್ ಪಢಾಯಿ ಕರ್ತಾ ಹೈ, ಜಬ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಹೀ ಹೋತಿ ಹೈ ತಬ್ ಪಢಾಯಿ ಕರ್ತಾ ಹೈ, ವಹಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ಲಾತಾ ಹೈ. ಲೋನಾವಳಾ ಮೇ ಏಕ್ ಆರ್ಮಿ ಕಾ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಹೈ, ಜಬ್ ವಹಾಂ ಸೆ ಗುಜರತೇ ಹಮ್ ಗಾಡಿ ಸೆ ತೋ ಆರ್ಮಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮೇ ಏಕ್ ಜಗಹ ಬಹುತ್ ಸಾರೇ ಬೋರ್ಡ್ ಲಗಾಯೇ ರಹತೇ ಹೈ. ಉಸ್ಮೇ ಏಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇನೆ ಪಢಾ ಥಾ, ಇಫ್ ಯು ಸ್ವೆಟ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಪೀಸ್ ದೆನ್ ಯು ಬ್ಲೀಡ್ ಲೆಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ವಾರ್, ಐಸಾ ಬತಾಯೆ. ಕಿತ್ನಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೈ ವೋ. ಜಬ್ ಯುದ್ಧ ನಹೀ ಹೋತಾ ಹೈ ತಬ್ ಜಬ್ ಬಹುತ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸ್ ಕರ್ತೇ ಹೋ ಆಪ್ ಯುದ್ಧ ಕಿ, ತೋ ವೋ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸ್ ಕ್ಯಾ ವೋ ಆದ್ಮಿ ಯುದ್ಧ ಮೇ ಬಹುತ್ ಕಮ್ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಹೋತಾ ಹೈ, ಉಸ್ಕಾ ಜ್ಯಾದಾ ಜಖ್ಮಿ ನಹೀ ಹೋತಾ ಹೈ ವೋ. ಜೊ ಯುದ್ಧ ಆನೆ ಪರ್ ಬಂದೂಕ್ ಲೇತಾ ಹಾತ್ ಮೇ ವೋ ಜಖ್ಮಿ ಹೋ ಜಾತಾ ಹೈ. ಉಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಸೆ ಮೃತ್ಯು ಕಾ ಸಮಯ ಆನೆ ಕೆ ಬಾದ್ ಭಗವಾನ್ ಕೋ ವಿಚಾರ ಕರ್ನೆ ಕಾ ಪ್ರಯಾಸ ಕರೆಂಗೆ ತೋ ನಹೀ ಆಯೇಗಾ ಆಪ್ಕೋ ಭಗವಾನ್ ಕಾ ಯಾದ, ಕ್ಯೋಕಿ ಜೀವನ್ ಭರ್ ಮೇ ಜೊ ಯಾದ ಕರ್ನೆ ಕಾ ಅಭ್ಯಾಸ ಕಿಯಾ ಹೈ ವಹೀ ಯಾದ ಆಯೇಗಾ. ತೋ ಆಪ್ಕೋ ಅಗರ್ ಲೈಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕರ್ನಾ ಹೈ ತೋ ಲೈಫ್ ಕೋ ಶುರೂ ಸೆ ಲೇಕರ್ ಅಂತ್ ಮೇ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕರ್ನಾ ಹೈ ಆಪ್ಕೋ, ಕೇವಲ ಯೂತ್ ಕೋ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ನಹೀ ಕರ್ನಾ ಹೈ, ಕೇವಲ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಲೈಫ್ ಕೋ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ನಹೀ ಕರ್ನಾ ಹೈ, ಕೇವಲ ಸ್ಟಡಿ ಲೈಫ್ ಕೋ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ನಹೀ ಕರ್ನಾ ಹೈ, ಆಪ್ಕೋ ಲೈಫ್ ಇನ್ ಟೋಟೋ ಇನ್ ಅ ಕಂಪ್ರಿಹೆನ್ಸಿವ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ ಲೈಫ್, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಲರ್ನ್ ದ ಸೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೋಗ ಈಸ್ ವೇ ಆಫ್ ಲೈಫ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯೋಗ ಈಸ್ ವೇ ಆಫ್ ಲೈಫ್, ಯೋಗ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಲರ್ನ್ಡ್ ಎಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಫ್ ಯು ಲರ್ನ್ ದ ವೇ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಎಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ವೆನ್ ಯು ಲಿವ್ ದ್ಯಾಟ್ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ಯೋಗ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಲಾಜಿಕಲ್ ಈಸ್ ಯೋಗ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಅರ್ಲಿ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವೆನ್ ಯು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯೋಗ ಬಿಕಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲಿವ್ ದ ಲೈಫ್ ಇನ್ ಯೋಗ ಹೋಲ್ ಲೈಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಇನ್ ದ ಮಿಡಲ್ ಏಜ್, ಇನ್ ದ ಯಂಗ್ ಏಜ್, ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಏಜ್, ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್, ಡಿಸೀಸ್ಡ್ ಏಜ್, ವೆರಿ ವೆರಿ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್, ಇವನ್ ಡೆತ್ ಟೈಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ವೆನ್ ಯು ಮೀಟ್ ಅ ಸಾಧು ಹೂ ಇಸ್ ಡೈಯಿಂಗ್, ಯು ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ಹಿಮ್ ಇನ್ ಬ್ಲಿಸ್, ಇನ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆನಿ ಸಾಧುಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮೆಟ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಕಿ ಐ ನೋ ವೇರ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಚಾರಿಟ್ ಈಸ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಮೀ, ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಸೂನ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೀಟ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ವೋ ಕೋಯಿ ಭ್ರಮ್ ಮೇ ಬಾತ್ ನಹೀ ಕರ್ ರಹೇ, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಇಲ್ಯೂಷನ್, ಇನ್ ಸಮ್ ಭ್ರಮ್ ಮೇ ಬಾತ್ ಕರ್ ರಹೇ, ಸಮ ಉನ್ಕೋ ಮೈಂಡ್ ಮೇ ವಾಯು ಘುಸ್ ಗಯಾ, ಉನ್ಕೆ ಅರ್ಧಾಂಗ ವಾಯು ಹೋ ಗಯಾ ಮೈಂಡ್ ಮೇ, ವೋ ಐಸಾ ಹೀ ಕುಛ್ ಬಕ್ ರಹಾ ಹೈ, ಐಸಾ ನಹೀ ಹೋ. ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಟಾಕ್ ವೆರಿ ಕೋಹರೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ದೇ ವಿಲ್ ಕೋಟ್ ಶ್ಲೋಕಸ್, ದೇ ವಿಲ್ ಶೆಡ್ ಟಿಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಸೇ ಐ ಆಮ್ ನೌ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೀಟ್ ಮೈ ಬಿಲವೆಡ್ ಲಾರ್ಡ್. ದ ಡೆತ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಪೇನ್ಫುಲ್ ಸಿಚುವೇಶನ್, ದೇ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಹ್ಯಾಪಿ ವೆನ್ ದ ಡೆತ್ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್. The most fearful thing when your spiritual life is balanced with your material life, the most painful thing, that is death, becomes a blissful event in life. In fact, the death event can be converted into a festival of uniting with the Lord. Is that a festival? Uniting with the Lord is a festival, ultimate festival of life. But for that festival to happen, you have to work the whole life. And when your priority is fixed, then sometimes, even if less money comes, you are happy. Sometimes less success comes in material life, you are happy. You don't just break your head on some little failure in life. In fact, when your spiritual strength is strong, you can stand up smiling in the failure also. And you will not get disturbed in success also. Success will not go in your head, and failure will not deject you. I think we all want to have that stage, right? Success should not enter my head, and failure should not make me depressed. In both the conditions, I should remain balanced. Labha labhau jaya jayau. So let us all think about this. I think your own planning, your own meditation, your own decision about what to put in number one priority, what to put later on, will depend upon how you are doing your sadhana and how you understand the importance of soul and how you understand the importance of nourishing the soul and how to nourish the soul. If you understand that, your effort of balancing your life will be successful. Most likely it will be successful. If your path and understanding is right, if your guidance is right, then you will be successful in balancing your life. You will be successful and happy in being a husband, in being a wife, being a father, being a professional, being a human being, being a devotee of the Lord. Because you have given time to the first priority, first time. Then you will be happy. Hare Krishna. If there is any question, I will like to answer. I want some water. Is there any question? Or I must accept that all of you are convinced, whatever I said. Yes, madam. What type of food we should eat? When? No plastic. I don't want plastic. Okay, give me 1 second. Again, whatever you want to know in life, you have to actually go in depth of that subject. Food is, before we come to actual food, we should know that food is in the three different types or three gunas. Food is either in the sattva guna or raja guna or tamo guna. Sattva guna food is vegetables, fruits, milk, simply cooked, not very highly spicy. Simple. Rajoguni food is maybe vegetarian food, but too much of spice, too much of hot, too much of chili, too much pungent, too salty, too bitter, very strongly spiced, you know. That is Rajoguni food. And Tamoguni food is vegetarian food, but it is old food, stale food, or food which is achieved by killing animals or killing living entities. That food is called tamoguni. By the definition of Bhagavad Gita, not my definition. Tamoguni food is that food which is, by definition, it is stale food or food acquired by hurting somebody or stealing somebody. I may eat vegetarian food, but if I steal your money and I buy food, that food is vegetarian, but it becomes tamoguni. Because the mode, the guna has changed. Or cooked with anger, cooked with hatred, cooked with this, you know, very negative emotions, is also tamoguni food. So it may look very attractively vegetarian food, but it's tamoguni, because how it is cooked also is important. Okay, these three categories. Then food has two types, I would say ingredient of food. One is the food itself, what you see in the plate, rice, dal, sabji. And another is the mood behind the food, which I just explained to you. When your mother cooks for you, my son is coming from hostel after 15 days, so she's cooking best dishes for you with love. My son is going to eat today after a long time. He loves this, he loves that. And that may not be like a five-star hotel food, but when you eat that, you feel so happy. Or somebody who hates you, but he has to cook for you, and he is cooking that in hatred, you know. He's not putting poison in that, but he's cooking with hatred. Even if it is favorite food, you will be unhappy in eating that food. Why? Because the bhav behind the food is different than the food it is, right? The food is itself one item, bhav behind the food is different. And when you eat food, you get affected by both. With the physical food, your body is nourished. With the bhav, your mind is contaminated or enhanced. If you eat food with cooked by mother, your heart becomes enlarged with love. And you eat food with some debauchee in the hotel, he has gone to prostitute in the night, he has smoked, he has drunken alcohol, and today he has fried medu vada, you eat that, your soul, your mind gets corrupted with the negative bhav of that person who has cooked. After knowing this, we should discuss what we should eat and what we should not eat. Is it important to understand this? Okay. Now the first rule is, don't eat food from unknown people. When you eat in restaurants, you are eating with hands of unknown people. You don't know one who is behind in the 5-star A+ category kitchen. Is he a womanizer, a gambler, or a meat eater, or a hunter, or a cheater, or a debauchee? You don't know. It's a 5-star hotel. Very nicely it will come to you. So we devotees, we don't eat food from unknown source. If I have to go and eat somewhere, I'll first inquire, who are they? Are they meat eaters? Or are they, whatever, I ask some information. And if I am assured, then I will eat. If I go to temple, I don't inquire, because they will give me only prasadam from the Lord, straight. But I go somewhere else, I will inquire. So Prabhupada ji also said from scriptures that don't eat food from unknown people's hand. Second thing, for the spiritual upliftment, for peace, for happiness. See, food has got another thing. There are purposes of eating food. Why we eat food? Tell me, why we eat food? To get strength. We eat food also for taste, swad. Is swad important? Very important, because swad will have central phase of secretions, gastric phase of secretions, intestinal stage of secretions, and digestion will take place nice. If the swad is there, smell is there, everything is important. So we eat food for nourishment, bala. We eat food for swad, and we eat food for ayu. What is ayu? Longevity. To live long. And I think all of us want to live long. Who wants to live short? So your food should successfully complete these three criteria. Another guideline for understanding. So what is longevity kind of food which is not attained by killing animals or living entities? किसी जीव को हत्या करने के बाद जो खाना होता है ना, वो आपको लंबी आयु नहीं दे सकता है, क्योंकि आपके वो पाप के भंडार को भर देगा, पुण्य को नष्ट कर देगा, और पुण्य कम होने से आयु कम हो जाती है. तो इसलिए हम लोग शाकाहारी खाना खाते हैं. जब हम आम खाते हैं, अभी सीजन में आम खाया कि नहीं आपने? बहुत सारे आम खाए होंगे आपने, लेकिन आपने जितने आम खाए, वो एक भी आम से खाने से कोई पेट भरा क्या? पेट तो उधर ही है. अभी भी आपको आम दिया, अगले साल भी आम देगा वो. तो पेड़ की हत्या नहीं की आपने. तो चावल खाते हो तो आप हत्या नहीं करते हो, गेहूँ खाते हो गेहूँ की हत्या नहीं करते, उल्टा एक बीज पेरते हो तो उसके 250 दाने तैयार हो जाते हैं. ऐसा खाना खाओ जो किसी को पीड़ा दिए बिना, हत्या किए बिना, कष्ट दिए बिना अर्जित किया हो, प्राप्त किया हो. और तो वो शाकाहारी आता है ऐसा खाना. और कोई शाकाहारी, और कोई खाना ऐसा नहीं आता है. और वो शाकाहारी खाना भी, मतलब बेसिकली खाना अर्जन करने में किसी को कष्ट नहीं होना चाहिए. शाकाहारी खाना भी चोरी करके, लूट करके, बिजनेस में मैनिपुलेट करके नहीं कमाना चाहिए, प्रामाणिकता से कमाना चाहिए. ईट फूड विच इज लेजिटिमेटली एंड सेंसिटिवली अर्नड, नॉट इन डिफरेंट मूड ऑफ एक्सप्लॉइटिंग समबडी. तो शाकाहारी अन्न खाने के बाद भी उसको सिंसियरली अर्न करके खाना, और जब बनाने का समय आता है तो उसको चटपटा बहुत मत बनाना, सिंपल बनाना, जो आपके मन में शांत लहरों को उत्पन्न करेगा, आपको एजिटेट नहीं करेगा। अगर आप बहुत तीखा खाओगे तो आपका माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा, होता है कि नहीं होता है, गैस बढ़ेगा, एसिडिटी बढ़ेगी, मन त्रस्त हो जाएगा आपका, अच्छा बहुत लगेगा आपको, कान से धुआं निकलेगा तो अच्छा लगेगा पानी पूरी खाने के बाद, लेकिन आपका माइंड जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाएगा, मेंटल बैलेंस विल बी डिस्टर्ब्ड। तो मन को संतुलन में रखना है तो आपको ऐसा अन्न खाना पड़ेगा जो मन को शांत रखेगा, जैसा खाएगा अन्न वैसा बनेगा मन। इसलिए हम लोग सात्विक खाना खाते हैं, बहुत मिनिमम स्पाइसिंग में खाते हैं, बहुत चटपटा नहीं खाते हैं, बहुत हैवी नहीं खाते हैं, सिंपल खाते हैं। और खाने में और एक नियम है, नो दाई सेल्फ, अपने आप को जानो और फिर खाओ। आपका हेल्थ क्या है, आपका प्रवृत्ति मोटा होने का है तो आप सिंपल खाना खाओ, आप बहुत दुबले प्रकार के हो तो आप हैवी स्वीटर स्वीट्स खा सकते हो। मतलब यू डिसाइड व्हाट यू आर बिफोर यू ईट व्हाट एवर कम्स ऑन योर प्लेट, डोंट जस्ट ईट एवरीथिंग व्हाट कम्स ऑन योर प्लेट। और उसके ऊपर एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि सात्विक खाना खाने पर भी पता नहीं वो अर्निंग करने में किसी को चीटिंग किया हो नहीं किया हो, काम सिंसियरली किया हो, काम चोरी नहीं किया हो, वी डोंट नो ना। तो जो जानते हुए जो उसमें कष्ट है वो तो आप टाल सकते हो, लेकिन अनजानते हुए जो उसमें इन्वॉल्व है वो कैसे टाल सकते हैं। जो आपने सब्जी लिया तो वो ट्रक में जब आया ना तो वो जो लेबर था वो पूरा दारू पी के फुल ड्रंक था, उस पर पाँव रख के सोया था, फिर वो जब उठा तब उसको दारू के नशे में उसने सब गोने को उतार दिया, उस पर वो चला भी था, होता है ना ऐसे मार्केट में ही नहीं होता है। तो ये तो अनजाने अनजाने उसके अंदर लगे हुए हैं, आपको पता नहीं है, आपने हर आलू को देखा है क्या किसके हाथ से आया मेरे घर पे, वो शायद किसान ने भी दारू पी के बनाया होगा उसको, वी डोंट नो। तो फिर अंत में क्या करते हैं हम लोग, उसको हमने ईमानदारी से कमाया है, सब कुछ लेजिटिमेट है, और अंत में उसका अब हम खाना बनाते हैं और उसको भगवान को भोग लगाते हैं, क्योंकि भगवान अपापविद है। वो हम जब कुछ अर्पण करेंगे उसमें जो भी पाप है वो लेकर उसको शुद्ध पवित्र करके प्रसाद के रूप में आपको देते हैं, तो उसके अंदर कोई विकार कोई गुण रहता नहीं है, बचता नहीं है उसके अंदर, ना वो सत्वगुणी है ना रजोगुणी है ना तमोगुणी है, वो दिव्य गुणी बन जाता है, इट बिकम्स ट्रांसेंडेंटल काइंड ऑफ फूड। वो दिव्य गुणी फूड जब आप पाते हो तो आपकी आत्मा आपके बुद्धि आपका मन आपके इंद्रिय सब शुद्ध हो जाते। अन्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा है। अगर व्यक्ति को जीवन में कुछ हासिल भी करना है भगवान को छोड़कर भी, तो भी आपका डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। पढ़ाई करना है तो भी क्या खा रहे हैं आप इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई के समय पे क्या खाना है इसका भी एक साइंस है। MBBS की पढ़ाई कर रहे हैं, अगर इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत हैवी पढ़ाई कर रहे हैं, डबल ग्रेजुएशन साथ में कर रहा है, तो हम विल गाइड देम व्हाट टू ईट व्हाट टाइम टू ईट हाउ टू ईट टू गेट बेस्ट ब्रेन कैपेसिटी। और अगर आपको जीवन को बैलेंस करना है तो फिर आपको सोल इंटेलिजेंस माइंड एंड बॉडी ये सबको अनुकूल ऐसा आहार करना चाहिए, वो बुद्धिमानी की बात है। और लंबी आयु तक जीना है संतुलित भाव से स्वास्थ्य से तो भी आपको वो फूड ढूंढना पड़ेगा आपके लिए। यस सर, आपका उत्तर का प्रश्न का उत्तर मिला आपको, समझ में आया? हाँ, रेफ्रिजरेटेड फूड इज इन तमोगुणा बाय डेफिनेशन, बिकॉज इट इज स्टेल फूड, इट इज केप्ट आफ्टर कुकिंग और मेकिंग फॉर लॉन्ग टाइम, लॉट ऑफ फंगस एंड बैक्टीरिया ग्रो इन दैट इवन इफ यू डू थॉइंग ऑल्सो। पुराने जमाने में क्या रिवाज था, सुबह बनाने का सुबह फिनिश करने का, शाम को फिर नया बनेगा शाम को फिनिश, बचा हुआ तो किसी गरीबों को इसको वॉचमैन को दे देने का, नेक्स्ट डे सुबह नया फ्रेश। मैंने पूरे मेरे बचपन के 25 ईयर्स, हम लोग इतने गरीब श्रीमंत नहीं थे, बहुत सिंपल और बहुत गरीबी थे शायद बचपन में, पूरे 25 साल तक इतने गरीब होने पर भी हमारे घर में फ्रिज नहीं था, मेरी मम्मी रोज ब्रेकफास्ट लंच डिनर तीनों फ्रेश बनाती थी 12 लोगों के लिए। इसलिए आज भी हेल्थ अच्छा है, क्योंकि उस समय स्टेल फूड नहीं खाया था, भले दाल चावल खाया था रोटी सब्जी खाई थी, कोई एफ्लुएंट पनीर नहीं खाया था रोज, लेकिन जो भी खाया था वो फ्रेश बनाया हुआ खाया था, फ्रेश बनाकर मंथन बनाकर मक्खन से हम लोग खाते थे ब्रेड को और चपाती को लगाकर, जो आज भी खाने का मौका नहीं मिलता हमको। तो रेफ्रिजरेशन ये कलयुग का एक नया आइटम आपको प्रस्तुत है, तो बरसों पुराना खाना भी आप खा सकते हो उसमें। बॉटल वाटर भी ऐसा ही है, वो क्या है बस बॉटल वाटर, बासी वाटर है, फ्रेश वाटर नहीं है वो। इसलिए मैं कहीं जाता हूँ ना बॉटल वाटर नहीं पीता हूँ, क्योंकि अच्छे पानी के नाम पे मैं बासी पानी पी रहा हूँ। सो लिव प्योर काइंड ऑफ लाइफ साइंटिफिकली। ओके सर, आपका प्रश्न क्या है? प्रणाम जन्नवत, प्रणाम। माइंडफुलनेस, मेडिटेशन जो है ना, मेडिटेशन ये ऐसी प्रक्रिया है जो आत्मा बुद्धि मन और इंद्रियों को एक साथ में इन्वॉल्व करता है। और ये जो हम लोग बोल रहे हैं माइंडफुलनेस वगैरह वगैरह, ये न्यू एंड न्यू टर्मिनोलॉजीज है, पर अल्टीमेटली हमारा जो ओरिजिनल ऑल कम्प्रेहेंसिव ऑल एंड कंपासिंग जो एंटिटी है वो ध्यान है। ध्यान का मतलब क्या है? ध्यान केवल भगवान का ही होता है, भगवान को छोड़कर लाल गुलाब पर ध्यान नहीं होता है। वो सब लोगों ने इंट्रोड्यूस किया है, जो माइंड का पीस चाहते हैं लेकिन भगवान को नहीं चाहते हैं, उन्होंने लाल गुलाब इंट्रोड्यूस किया है, तो नीला गुलाब इंट्रोड्यूस किया है, एक पॉइंट इंट्रोड्यूस किया है। लेकिन असल में ध्यान की व्याख्या क्या है? विष्णु पर ही ध्यान किया जाता है, परम भगवान पर ही ध्यान किया जाता है, उसके नाम पर ही ध्यान किया जाता है, या उसके रूप पर ध्यान किया जाता है। दैट इज द ओरिजिनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ध्यान मेडिटेशन। और जब वो उस वस्तु पर ध्यान होता है जो कंप्लीटली स्पिरिचुअल है, आपका स्पिरिट भी चार्ज हो जाता है, और आपका स्पिरिट चार्ज होने पर आपका माइंड इंटेलिजेंस सब फुल हो जाता है। जिसने आपने कहा ना माइंडफुलनेस, वो तब होता है जब आपका स्पिरिट वहां पर फुल हो जाता है। यू हैव टू नरिश द रूट, देन द ब्रांचेस एंड द लीव्स एंड द फ्रूट्स एवरीथिंग गेट नरिशमेंट। आप एग्री करते हो इस बात को? आप पेड़ को कहाँ जल देते हो? यस, यू ऑल्सो स्प्रिंकल ऑन द लीव्स एंड एवरीथिंग, बट वेयर यू पुट द वॉटर मोस्ट इज द रूट, क्योंकि वो रास्ता है। बिना फ्रे ब्रांचेस को पानी देने पर भी उस रास्ते से श्योर शॉट पानी ऊपर पहुंचेगा, ये आपको पता है। उसी तरह से रूट को आपको नरिशमेंट देना है, और वो ध्यान से प्राप्त होता है। इसलिए पाश्चात्य लोग योग सिखा रहे हैं, वो क्या सिखा रहे हैं? बहुत सारे योग की किताबें लिखा होता है लाभ। लाभ में क्या होता है? इसमें आपकी सेक्सुअल पावर बढ़ जाती है, आप यौन संबंध अच्छी तरह से कर सकते हो। ये भी आजकल के मॉडर्न किताबों में एंड में योग और प्राणायाम के आगे लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है? वो योग और प्राणायाम को केवल स्वास्थ्य और इंद्रिय भोग के लिए यूज कर रहे हैं। योग का उपयोग अच्छी तरह से और इंद्रिय भोग कैसे किया जाए उस लिए किया जा रहा है, बट योग का पर्पज वो नहीं है। आज योग को मार्केट में इतना बेचा जा रहा है क्यों? भगवान को प्राप्त करने के लिए नहीं, अच्छा हेल्थ प्राप्त करके और अच्छा भोग लेने के लिए, इन द बेटर वे टू एंजॉय मटेरियल लाइफ। बट हमारा जो योग शास्त्रों में लिखा गया है वो भगवान से जोड़ने के लिए है, और भगवान से जोड़ने के बाद में मन संतुष्ट हो जाता है, बुद्धि शांत और संतुष्ट हो जाती है, इंद्रियां भी शांत हो जाती है, एजिटेट नहीं होती है। और आजकल के लोगों का जो खाना है, जो जीवन पद्धति है, जो दिनचर्या है, उससे माइंड इंटेलिजेंस एंड बॉडी ऑल आर एजिटेटेड। इसलिए इतने गुने हो रहे हैं ना मार्केट में। जिस प्रकार से मार्केट में गुने हो रहे हैं वो समाज के संतुलन का लक्षण नहीं है। अगर समाज संतुलित है, संतुष्ट है, तो कोई रेप नहीं करेगा, चोरी नहीं करेगा, डकैत डाका नहीं डालेगा, किसी को दुख नहीं पहुंचाएगा। संतुष्टि का परिणाम है कि आप किसी को दुख नहीं दोगे, उनका सुख ही सोचोगे, उसको हेल्प करोगे, मदद करोगे। तो हम लोगों को वो संतुष्टि के लेवल पे जाना है, इंटेलेक्चुअली मेंटली एंड फिजिकली ऑल्सो। फॉर दैट स्पिरिचुअली वी हैव टू बी नरिश्ड, देन ऑटोमेटिकली एवरीथिंग फॉल्स इन प्लेस। जैसे यहाँ पर ठीक से खाना खाएंगे ना तो पेट और पेट के नीचे जो इंद्रिय हैं वो सब बैलेंस में रहेंगे. दे आर इन वन लाइन. व्हाट यू फीड द टॉप अफेक्ट्स द एंड ऑल्सो. सो हमारे शास्त्र में लिखा है कि आप पवित्र अन्न खाओगे तो आपका उदर और उदर उपस्थ यानी कि जननेन्द्रिय सब काबू में रहेंगे, कहीं एजिटेशन पैदा नहीं होगा. वी वॉन्ट पीस, वी डोंट वॉन्ट एजिटेशन. एंड आवर फूड शुड नॉट, आवर फूड एंड आवर प्रैक्टिसेस व्हाट वी डू इन लाइफ शुड नॉट क्रिएट एजिटेशन एट एनी लेवल. वी शुड बी वाइज इनफ टू एक्सेप्ट दोज थिंग्स विच विल क्रिएट सेटिस्फैक्शन एंड पीस इन माई लाइफ. फॉर दैट ओनली ह्यूमन लाइफ इज देयर, टू एनालाइज, टू अंडरस्टैंड, इंटेलेक्चुअली एनालाइज एंड अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट आफ्टर एनालाइजिंग, नॉट रैंडमली और वोरेशियसली और इनडिस्क्रिमिनेटली. वी आर सपोज टू एक्सेप्ट एवरीथिंग एंड रिजेक्ट एवरीथिंग विथ नॉलेज, विथ फुल अंडरस्टैंडिंग. देन वी कैन कॉल आवर सेल्व्स ह्यूमन बींग्स. अदरवाइज एनिमल्स कैसे होते हैं? वॉट एवर दे सी जस्ट दे वॉन्ट टू ग्रैब इट. देर इज नो कंट्रोल एनी वेयर. ओनली एजिटेशन इज देयर ऑफ हंगर, ऑफ सेक्स, ऑफ स्लीप, ऑफ फियर, ऑल आहार निद्रा भय मैथुन, एवरीथिंग इज एजिटेटिव. बट वी डू द सेम थिंग, देन वेयर इज द पीस? सो आपको समझ में आया, माइंडफुलनेस इज वन एस्पेक्ट ऑफ दैट मेडिटेशन. रियल ध्यान इज एनकम्पासिंग एवरीथिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम. Why I did only one thing and go on researching on that? Our scripture has given everything. After you do all research, we come to the same conclusion. But we want to come to the same conclusion denying our scriptures. Is that right? Today's science is what? Deny God and come to the same conclusion what is given by God in scriptures. But wise man will accept God and give God's conclusion. Take it directly, ready-made, no need of researching, wasting time. वही चीजें बार बार अभी आ रहे हैं वापस. अभी जो योग को वो इंडियनाइज्ड एंड हिंदू लोगों का और वो ऐसा कुछ धार्मिक चीज है करके रिजेक्ट कर दिया गया था. किसी एक योगी ने हिमालय में कहा था, एक दिन यही योग जब विदेश जाएगा और वापस लौट के आएगा ना, सब लोग करेंगे उसको. और आज क्या हो रहा है? हो गया, अमेरिका में गए ना वो, अमेरिकन योगी लोग आके सिखाने लगे आपको, तो बहुत योग अच्छा हो गया वो बहुत. लेकिन हमारे लोग तो जमाने से कर रहे हैं उसको, तब उनको वैल्यू नहीं था उसको. पर प्रभुपाद जी ने वही चीज़ आके वहाँ सिखाई और वहाँ के लोगों ने यहाँ सिखाई, तो फिर यहाँ लोगों ने एक्सेप्ट किया उसको. इसको क्या बोलते हैं मालूम है? इंटेलेक्चुअल स्लेवरी, बौद्धिक गुलामगिरी है ये हमारी. बुद्धि से हम लोग गुलाम हैं, अपने को यहाँ पर वैल्यू देते नहीं है. अपनी चीज़ वहाँ से आई तो उसको वैल्यू देते हैं, वो लोग पेटेंट करेंगे तो हम लोग उसको लेंगे. ये हमारी कमजोरी है एक्चुअली. वी शुड बी प्राउड ऑफ आवर हेरिटेज एंड आवर वेल्थ दैट वी हैव इन आवर कंट्री एंड बिकम वेल्दी विथ आवर वेल्थ ओनली. दैट शुड बी आवर प्राइड, व्हाई नॉट? यस सर. उसके लिए सत्संग आवश्यक है, वो भी कंसिस्टेंट सत्संग आवश्यक. ऐसा नहीं कि भाई एक साल में एक दिन वो उत्सव में किया, बाद में साल भर कुछ नहीं किया, फिर वापस उत्सव आए तो सत्संग किया, फिर थोड़ा इंस्पायर हो गए, फिर भूल गए. जैसे हम लोग दिन में 3 बार खाते हैं ना, वैसे सत्संग भी नियमित होना चाहिए. जैसे शरीर को रोज भोजन की आवश्यकता है, वैसे आत्मा को भी रोज सत्संग का भोजन देना चाहिए, भगवान के नाम का भोजन देना चाहिए, कथा का भोजन देना चाहिए नियमित रूप से. उतना मिनिमल समय क्यों ना हो, आत्मा के लिए रोज देना ही चाहिए. और वो समय कभी है? सबसे पहले सूर्योदय के पहले, दिनचर्या शुरू होने के पहले हम लोग भगवान के लिए, आत्मा के लिए समय देते हैं. पहले आत्मा पोषण और फिर बाद में बाकी सब कुछ काम हमारे जीवन के बाद में करते हैं. दैट इज द फर्स्ट प्रायोरिटी. तब जाके संतुलन होगा आपका लाइफ का, बहुत बढ़िया से होगा, कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी. इफ यू नरिश ईच आइटम प्रॉपरली, देर विल बी नो माल नरिशमेंट एनी वेयर एंड नो सिम्टम्स ऑफ माल नरिशमेंट. है ना, वो आत्मा को कुपोषित रखा है तो उसका सिम्टम पैदा हो जाएंगे, बुद्धि को भ्रष्ट किया है तो उसके सिम्टम पैदा हो जाएंगे, मन को एजिटेट किया है तो उसके सिम्टम पैदा हो जाएंगे. प्रकट तो हो गए वो. लेकिन सभी लोगों को, सभी स्तरों को अगर पोषण करेंगे तो बहुत सुंदर संतुलन और आनंदमय जीवन आप जी सकते हो। आनंद ऐसी चीज है जो आप सबको चाहिए, हमको भी चाहिए, आपको भी चाहिए, लेकिन वो प्राप्त होता है केवल आध्यात्मिक पोषण से। फिर मन भी आनंद का अनुभव करता है, शरीर भी आनंद अनुभव करता है, बुद्धि भी आनंद का अनुभव करती है। और कोई प्रश्न है? सबको विनती है हमारी, कोई भी उम्र हो आपकी, कोई मिडिल एज है, कोई यंग है, कोई ओल्ड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी भी जीवन हमारे हाथ में है। बेटर लेट देन नेवर। और वो प्राण प्रयाण समय वेट करने की जरूरत नहीं है, अभी से शुरू करो और प्रार्थना करो कि बहुत समय बीत गया है, बहुत चीज़ों में वेस्ट हो गया है, ज़्यादा कुछ हाथ में वेल्थ नहीं है हमारे स्पिरिचुअल, अभी इसके आगे जो करोगे भगवान हमें आपकी याद करने के योग्य बना देना, और आप हमारे जीवन में सबसे टॉप प्रायोरिटी में रहे, कृपा करके टॉप पोजिशन में रहे हमारे जीवन में, ये आपको विनती है। मन हमारा भटक जाएगा फिर भी आप हमें खींच के लेके आना और अपने आप को हमारे जीवन में टॉप पोजिशन में रखना। प्लीज प्रे दैट रेगुलरली, लॉर्ड विल हेल्प यू, भगवान आपको मदद करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे।